सते नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। नमो नमो श्री गुरुदेव जी चरण पड़े बहु बार भव सागर से उधार कर मेरा कर दो बेड़ा पार। गुरु मूरत मुख चंद्रमा ने नन चंद्र चको आठ पहर निरखत रहूं गुरु चरणन कियो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की
जय।
श्रीमद् भागवत महापुराण की
जय।
बोलिए किशोरी काम धेनु मैया की
जय।
बोलिए बाल कृष्ण भगवान की
जय।
आइए भाव के साथ कीर्तन करेंगे और आप भी अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए गोविंद नाम कीर्तन गाएं।
हो दरबार में बंसी वाले की दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ओ दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं।
दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं।
I'm
वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, बोलिए संत भगवंत की, बोलिए श्री गैया मैया की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम भगवती मैया के चरणों में ध्यान लगाते हुए श्री बाल कृष्ण प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हुए किशोरी मैया के चरणों में ध्यान लगाते हुए सभी भक्तगण जो कथा पांडाल में विराजमान है व्यासपीठ के समक्ष, सभी को व्यासपीठ की ओर से भाव भरा राधे कृष्ण। आइए सभी श्री हरि का ध्यान लगाते हुए बाल कृष्ण भगवान के चरणों में वंदन करते हुए सभी भक्तगण अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और आज पांचवें दिन की कथा में भाव के साथ डुबकी लगाएंगे। कल आपने श्रवण किया गोकुल धाम गौ सेवा के तत्वाधान में महाराज श्री सुनील जी महाराज के सानिध्य में नाना प्रकार की कथाएं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। तो कल की कहां 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 विश्राम हुई थी कथा। कल हम सभी ने श्रवण किया, श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को बताया है कि भगवान के भक्त प्रहलाद जी महाराज ने किस तरह से भगवान को वंदन किया, भगवान की भक्ति की और उसके पश्चात में समुद्र मंथन की कथा आप सभी ने श्रवण की थी, गजग्रह की कथा आपने सुनी कि भगवान को हर वक्त हर समय याद करते रहना चाहिए। सूक्ष्म रूप में आपने सुना प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव, मैया सीता की विदाई और अंतिम में विश्राम हुआ था। तो क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। तो भगवान प्रकट होते हैं, वसुदेव जी महाराज नंद गांव छोड़ के आए हैं और वहां से कन्या को उठा करके लाए हैं, कन्या आसमान में उड़ जाती है। कलयुग में चिंतपूर्णी भद्रकाली आदि आदि नामों से मां की पूजा हुई है। इधर महाराज नंद गांव में पता चला है कि यशोदा मैया के घर में लाला हुआ है। तो जैसे ही देखने को आ रहे हैं सब भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो सभी बड़े भाव के साथ दर्शन कर रहे हैं। अरे इतने वर्षों के बाद यशोदा मैया के घर में, मैया के आंगन में पुत्र हुआ है और मैया को बधाई दे रहे हैं। अरे मैया आपको बड़ी बड़ी बधाई हो। ब्रजवासी महाराज बड़ा नाच रहे हैं, बड़े भाव के साथ गा रहे हैं और मालूम है कैसे कैसे बन के आ रहे हैं। कोई मिठाई बांट रहा है, कोई लड्डू बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई रंग उड़ा रहा है, कोई गुलाल उड़ा रहा है। ब्रज के संतों ने अपना भाव रखा है और किस किस चीज की उपमा दे रहे हैं मैया यशोदा को, नंद बाबा को, भगवान श्री कृष्ण को। मालूम है क्या कहते हो कि बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला। मिठाई खाते हो, गुजिया खाई कभी। तो कह रहे हैं बोले भैया कि बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला की पीड़ा से प्यारे बलदेव जी, रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला की नंद महीप बने नमकीन, और गोकुल गांव सब गरम मसाला, और जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने की रबड़ी रात में लड़ुआ सो लाला। ओहो महाराज, जलेबी के तरह की स्वीट है, मीठी है मैया। और देखो लाला, जैसे लड्डू होता है ना गोल मटोल, वैसे गोल गोल कान्हा को जन्म दिया है। आज तो महाराज नंद बाबा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, नंद बाबा के पास कोई शब्द नहीं है जो अपनी खुशियों को, जो अपने इस आनंद को व्यक्त कर सके। जो भी नंद बाबा के दरबार में आया ना, कोई ऐसा नहीं था जिसको बाबा ने कुछ ना दिया हो। कोई गोपी आती बोले, बाबा इतने वर्षों के बाद खुशियां आई है तो मुझे कंगन चाहिए, तो मैया यशोदा बड़े खुश होके देती, ले जा गोपी। कोई कहती, मैया सुंदर से वस्त्र दिला दे, तो मैया सुंदर सुंदर वस्त्र देती, हीरे मोती सोना चांदी लुटा रही है। तो गोपी गई दौड़ी दौड़ी और सखियों को जाके बताया, अरे तेरे को मालूम है मेरे को यशोदा मैया ने सोने के कंगन दिए। बोले अच्छा, तो दौड़ी दौड़ी गई, अरे मैया मोको भी कंगन दे। तो मैया बदले में 9 लाख हार देती है, ये ले जा, तू खुश रहे, आज मैं बहुत खुश हूं। संत कहते हैं, ठाकुर जी के भक्त कहते हैं कि इतना लुटा रहे नंद बाबा, और जितना लुटा रहे महाराज उतना ही बढ़ता जा रहा है, मानो लक्ष्मी जी खजाने में आके विराजमान हो गई। जितना नंद जी लुटाए उसका दुगना होता जाए, तिगुना होता जाए। इधर महाराज कंस को पता चलता है कि जिसके द्वारा हमारी मृत्यु होने वाली है, जो हमारा काल है वो प्रकट हो गए। अब तो महाराज नाना प्रकार के बातें दिमाग में आती कि क्या करना चाहिए, अगर उसने जन्म ले ही लिया है तो मारे भी जाएंगे। तो अपने सैनिकों को कहते हैं, बोले भैया जाओ जितने भी इस महीने के अंदर बालकों ने जन्म लिया है उन सबको पकड़ो और उनको मार दो। तो उन सब बालकों में जिसके द्वारा हमारी मृत्यु लिखी है वो भी मारा जाएगा। तो सैनिक कहते हैं, बोले महाराज कैसी बातें कर रहे हैं। बोले पहले तो हमें अपने घरों में घुसने कौन देगा, और किसी ने देख लिया तो महाराज हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। अब तो यहां कंस के पास पूतना आती है, बोली तुम चिंता मत करो, मैं उस बालक को खोजूंगी और मैं उसको मार दूंगी। तो कंस कहता, बोले तुम्हें वहां जाने कौन देगा, अरे तुम्हारा ये भयानक रूप, ये तुम्हारा काला सा चेहरा, तुम्हारे लंबे लंबे दांत, राक्षसी जैसा पूरी देह, तुम्हें वहां जाने कौन देगा। तो क्योंकि पूतना मायावी थी, कहती मैं अपना रूप बदल लूंगी, जब अपना रूप बदलूंगी तो किसको क्या पता चलेगा, और फिर भी अगर पता चलता है तो मैं अपना घूंघट लगा लूंगी। देखो संत कहते हैं, बोले सीधे से शब्दों में कहें तो पूतना कौन, जिसको पूत ना हो, जिसको संतान ना हो। आज तो महाराज ये पूतना सुंदर सी गोपी बन गई, और अपने सर पे एक टोकरा रखा, उसमें कुछ खिलौने भरे, और चल देती है उस बालक को ढूंढने के लिए। अब तो महाराज नंद भवन के सामने तो इतनी सारी गोपियां, इतने सारे ग्वाले, इतने सारे भक्तगण हैं, अब किसी गोपी को पूछने लगी, बोली बहन ये बता कि नंद भवन का है। तो बोली तुम कौन हो? बोली मैं क्यों बताऊं नंद भवन मैं कौन हूं? तो गोपी कहती बोली फिर मैं भी क्यों बताऊं कि नंद भवन का है? तो पूतना कहती है बोले अच्छा ठीक है मैं बताती हूं, जो आज जिसके लिए जन्मोत्सव मनाया जा रहा है मैं उसकी मौसी लगती हूं रिश्ते में। तो गोपी कहती अरे मैं तभी तो सोचूं इतनी सुंदर तो कन्हैया की मौसी ही हो सके। तो बोली ठीक है अगर तुम मौसी हो तो जहां दो यमलार जिनके वृक्ष खड़े हो समझना वो ही नंद भवन। अब तो महाराज नंद भवन की ओर चल देती है क्योंकि कंस को बोल के आई थी कि अगर मैं उसको उठा के उसका गला भी नहीं दबा पाई तो मैं अपने इस सनों पर जहर लगा के जाऊंगी और उसको दूध पिलाऊंगी वो मर जाएगा। तो आज तो नंद भवन की ओर चली है, नंद भवन के दरवाजे पर आकर के खड़ी हुई है और आवाज लगा रही अरे मैया बधाई हो। मैया बड़ी खुश है, यशोदा मैया आई अरे आ बहन अरे तो को भी बधाई हो। मैया जो भी आता उसका आदर भाव करती और क्योंकि लाला भयो तो महाराज कहती तुम यहां विराजमान हो मेरे लाला के दर्शन करो और मैं तुम्हारे खाने की व्यवस्था करती हूं। मैया तो चली गई भोजन की व्यवस्था करने, पूतना ने भगवान को अपनी गोद में लिया है और भगवान अपने दोनों नेत्रों से पूतना को टकटकी लगाए देख रहे हैं। बोले ओहो मौसी जी बन के आई है, मौसी जी का बड़ा बड़ा स्वागत है। जो आप सोच के आई हो हमें सब मालूम है मौसी जी। बोले हाँ ये तो गई, अब अपना काम आसान हो गया। तो लाला को स्तनपान करने लगी जिन पर विष लगा हुआ था। विचार करती है बोले एक मिनट स्तनपान करेगा दो मिनट करेगा देन इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो जगत पिता है वो तो आराम से स्तनपान कर रहे हैं, आराम से दूध पी रहे हैं। उतना विचार कर रही है कैसा बालक है, अब तक तो मृत्यु हो जानी चाहिए थी, अब तो भगवान ने दूध पिया है स्तनपान कर रहे हैं और देखते ही देखते भगवान उसके प्राणों को खींचने लगे। अब तो महाराज चिल्लाने लगी अरे लाला अरे ओ कन्हैया अरे ओ यशोदा के छोरा, जोर जोर से चिल्लाने लगी। आज तो महाराज जैसे ही चिल्लाने लगी तो देखते ही देखते भगवान ने आज पूतना के प्राणों को खींच लिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। जैसे ही प्राणों को खींचा तो महाराज विशाल रूप धारण कर लेती है और नंद भवन से दौड़ लगा ली, जंगल में जाकर के प्राण निकल जाते और विशाल देह धारण कर ली। पूरे नंद गांव में शोर मच गया, बोले अरे भैया हमारे तो कान्हा को एक राक्षसी मारने को आ गई। दौड़े दौड़े नंद भवन की ओर आए, मैयाएं आ रही है, दौड़ लगा रही है नंद भवन की ओर और उधर पूतना के वक्ष स्थल पर बैठ करके वो छोटा सा कन्हैया मुस्कुरा रहा है। इधर सब मैया यशोदा को कह रहे हैं बोले अरे मैया तू अपने घर में कम से कम पूछ तो लिया कर कि कौन है कि कौन नहीं, ये बता तेरा लाला कहाँ है। बोली लाला तो पालने में सो रहे होगो, पर बहन मोकू क्या मालूम थी, मैंने समझा कि कोई मिश्रानी होगी लाला के दर्शन करने आई होगी जैसे आप करने आते हो, तो मैंने कहा बहन दर्शन कर ले। लेकिन मुझे क्या मालूम था, अब देखा पालने में जाके देखा तो ठाकुर जी नहीं। अब तो जहां विशाल पूतना पड़ी हुई है वहीं सारे ब्रजवासी गए, मैया गई देखा है ठाकुर जी को, तो मैया ने अपनी झट से गोदी में ले ली और अपने सीने से लगा लिया, अरे लाला तोकू कहीं लगी तो ना है? अरे यार राक्षसी ने स्पर्श कर लियो। अब तो महाराज संत समाज कहती है, बोले ये पूतना अविद्या है, ये कामना है, और कहते हैं कि चौदह जगह पर ये वासना, ये अविद्या रूपी पूतना वास करती है। बोले पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और कहते हैं कि ये जो पूतना थी ये पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या, कल आपने कथा श्रवण की थी ना, भगवान वामन भगवान बनकर के आए थे, और तीन पग में, दो पग में भूमि नापी और एक पग सर के ऊपर रख दिया। तो राजा बलि की कन्या सुकन्या थी। बोले जिस समय भगवान गए थे इनके पास तो इसने कहा था, बोले अगर इतना सुंदर सा मेरा पुत्र बन के आता तो मैं इसको दूध पिलाती। और भगवान ने जैसे ही अपना रूप बदला तो कहने लगती है कि अगर ये मेरी कोख से जन्म लेता तो मैं इसको अपने इस स्तनों पर जहर लगा के मार देती। तो भगवान ने वहां इस रतनमाला को दोनों आशीर्वाद दिए हैं और कहा है कि तेरी दोनों इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो आज मैया यशोदा अपने लाला को गोद में उठा करके दुलार कर रही हैं। गोपियों ने कहा, बोले मैया तेरे लाला को इस राक्षसी ने स्पर्श किया है तो तू इसको स्नान करा। तो मैया गौमूत्र लाती हैं, जल में डाला और ठाकुर जी को स्नान कराती हैं, अपने कन्हैया की नजर उतार रही हैं। और उधर भगवान शिव को पता चला है कि भगवान का अवतार हो चुका है, तो कैलाश पर्वत पे भगवान शिव विचार करते हैं कि भगवान का दर्शन कैसे हो। तो भगवान शिव के दर्शन करने की अभिलाषा हुई है। मैया पार्वती को कहते हैं, बोले हम तो जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी अवतार ले चुके हैं। मैया कह रही है, बोले बाबा आपको दर्शन करने कौन देगा, कम से कम इस वेश को तो बदलो। तो आज भगवान शिव बाल कृष्ण भगवान के उस रूप के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आइए हम भी भाव के साथ भगवान का दर्शन करेंगे। किस भाव के साथ भगवान शिव गए हैं, संत समाज गाते हैं, भक्त समाज गाती और कहती है कि दर्श को चाल पड़े शिव भोले भंडारी। उधर भगवान श्री कृष्ण जैसे मैयाएं अपने लाला को पलने में लिटाती हैं, ठाकुर जी पलने में लेट रहे हैं, भाव के साथ तालियां हो जाते हैं। दर्श को चाल पड़े शिव भोले भंडारी,
दर्श को चाल पड़े शिव भोले भंडारी।
ठाकुर जी बाल कृष्ण प्रभु पल्ले में लेटे हुए हैं,
अरे लेट पालना झूला झूले, लेट पालना झूला झूले,
लेट पालना झूला झूले,
लेट पालना झूला झूले।
मोहन मदन मुरारी दर्श को
चाल, दर्श को
जय हो,
दर्श को चाल पड़े शिव भोले भंडारी,
दर्श को चाल पड़े।
Thank you.
शिव ने अपने तन के ऊपर से भस्म हटाई है और साधु वेश धारण कर लिया।
साधु का जब वेश बनाया लगा भगवती तन में,
साधु का जब वेश बनाया लगा भगवती तन में,
ओ साधु का जब वेश बनाया लगा भगवती तन में,
साधु का जब वेश बनाया लगा भगवती तन में,
कि बाल रूप भगवान का देखो,
बाल रूप भगवान का देखो,
मगन हुए शिव मन में दर्श को चाल पड़े, शिव भोले भंडारी
दर्श को चाल पड़े, शिव भोले भंडारी।
और जोर से आवाज लगाई, अनाथ निरंजन। अरे मैया आवाज सुनती हो तो मेरे को बड़ी बड़ी बधाई
कि बीच जगह में अलख जगाया, बीच जगह में अलख जगाया, मात यशोदा आई,
बीच जगह में अलख जलाया, मात यशोदा आई।
दौड़ी दौड़ी मैया आई, बोले हाँ बाबा कहो क्या दान में दूं, मांग लो जो चाहिए आज मैं बड़ी खुश हूं।
अरे मैया चाहिए कछु ना, कोई वस्तु नहीं चाहिए,
सुन मुझे क्या चाहिए।
अरे दर्श करा दे कान्हा के मां,
दर्श करा दे कान्हा के मां,
दर्श करा काना के मां,
दर्श करा दे काना के मां,
ओ कह के तीर लगाई दर्श को,
दर्श को
जय हो,
दर्श को चाल पड़े, शिव भोले भंडारी,
दर्श को चाल पड़े, शिव भोले भंडारी।
हरि वो भाव के साथ दोनों हाथों की तालियां बजाते हैं।
छोली दर...
को
दर्श को
दर्श को चाल पड़े शिव भोले भंडारी
दर्श को चाल पड़े शिव भोले भंडारी
मीठी मीठी तालियां बजाते
हरि बोल
जो चाहिए देख आटा चाहिए आटा ले जा और तेरे को चावल चाहिए चावल ले जा कुछ भी ले ले लेकिन कान्हा के दर्शन नहीं कराऊं अरे बाबा मेरा तो छोटो सो कन्हैया तेरे गले में ये लंबे लंबे सांप अरे बाबा अरे वो बुढ़िया को डर लगे देख तो सही तेरे गले में जो सांप है ये कभी इधर को मुंह करे कभी इधर को मुंह करे अरे मेरा तो छोटो सो कन्हैया है बाबा वो तो डर जाएगा बोले मैया जिन सांपन की तू बात करे ना उन सांपन के ऊपर तो तेरा कन्हैया नृत्य करे तो मैया कहती अरे ओ बाबा जोर से बोल क्या कहे मन मन में मत बोल बोले मैया कछु ना बोले कान्हा के दर्शन करवा देना मैया बोले देख बाबा सोना चांदी हीरे मोती मणि कणी जबरात कुछ भी ले जा और तो और गैया ले जा दो चार कोई कमी ना है लेकिन बाबा हाथ जोड़ के माफी मांगू मेरे कान्हा के दर्शन ना हो बोले मैया जा अगर तू हटी है तो मैं भी पक्का सीखी मैं भी दर्शन करके ही जाऊंगा ठाकुर जी पल्ले में लेटे लेटे मुस्कुरा रहे हैं
कि दोनों की हट देख के काना मंद मंद मुस्काए
दोनों की हट देख के काना मंद मंद मुस्काए
दोनों की हट देख के काना मंद मंद मुस्काए
दोनों की हट देख के काना
लीला रची श्याम ने देखो रो रो के चिल्लाए
लीला रची श्याम ने देखो रो रो के चिल्लाए
ओ लीला रची श्याम ने देखो रो रो के चिल्लाए
लीला रची श्याम ने देखो रो रो के चिल्लाए
ओ दर्शन करवा दे तू मैया को चाल पड़े शिव भोले भंडारी
दर्श को चाल पड़े शिव भोले भंडारी
अरे लेट पालना झूला झूले
लेट पालना झूला झूले
लेट पालने में झूला झूले
लेट पालना झूला झूले
मोहन मदन मुरारी दर्श को चाल पड़े शिव भोले भंडारी
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 बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की
जय
श्री बाल कृष्ण भगवान की
जय
तो भगवान शिव कहते हैं बोले मैया जब तक तू दर्शन नहीं करावेगी ना तो देख तूने सुना होगा कि संत अगर अपनी जिद पे आ जाएं तो वो मानते नहीं तो मैया मालूम है क्या कहती बोले बाबा तूने संत हट करी होगी देखी होगी पर तूने अभी मैया की हट नहीं देखी देख तू कितनी भी कोशिश कर ले। तो बाबा पता है क्या कहते, बोले मैया हम तेरे दरवाजे पे धूनी रमा के बैठ जाएंगे, सो कभी तो तेरो लाला आवेगो। तो मैया कहती अच्छो बाबा है, इतनी इतना समझा लिया, समझ में ही नहीं आती। तो कहती जा एक काम कर, तू दरवाजे पे बैठ ही जा, मैं भी देखूं कि तू कब तक बैठे, और जब तक तू यहां बैठे रहेगो बाबा तब तक देख मैं अपने कन्हैया को कहीं भी नहीं जाने दूंगी। तो बाबा कहते मैया देख इतनी जिद मत कर, मैं तो बड़ी दूर से चल के आया हूं, और हमारे गुरुजी का आदेश है कि अगर कृष्ण के दर्शन नहीं हुए तो वापस मत आना। अब बता मैया हम कहां जाएंगे। तो मैया कहती बाबा वो तेरो काम है, तू जाने जहां जानो है जा। तो मैया को बार बार समझाने की कोशिश करें तो मैया ने भगवान शिव के मुख के सामने दरवाजा बंद कर दिया। पर कहते हैं कि दरवाजा जहां होता है वहां खिड़कियां भी होती है, तो भगवान शिव खिड़की को खोल के कह रहे हाँ मैया दर्शन करवाओगी कि ना। मैया बड़ी परेशान, बाबा जाना तेरे को बोल दिया, नहीं करवाना तो नहीं करवाना। तो बाबा कहते देख एक साल में तो तेरा लाला बाहर आवेगो, एक साल तक यही खड़ा रहूंगा। मैया कहती जा तू एक साल तक यही खड़ा रहे, मेरे भवन में 12 दरवाजे और तू एक साल की बात कर रहा है, मैं 2 साल तक अपने लाला को बाहर नहीं जाने दूंगी, महल से इस भवन से बाहर नहीं जाने दूंगी। अब भगवान शिव को कुछ समझ में नहीं आए क्या करें, लेकिन ठाकुर जी पलने में लेटे लेटे जोर जोर से रोने लगे, और उधर भगवान शिव कह रहे हैं जा हम भी कहते कि तेरे लाला के दर्शन हमें होंगे और तू ही करावेगी। मैया कहती जा कोशिश कर ले नहीं होंगी। मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला को गोदी में उठाया, गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, पड़ोसन अड़ोसन आ गई, लाला की आवाज आ रही है रोने की। मैया जितना कहे बेटा चुप हो जा चुप हो जा, ठाकुर जी उतनी जोर से रोए। मैया ने सब कुछ कर लिया। अब मैया कहते कि जब भी कोई छोटा सा बालक रोने लगता है तो मैया को एक ही चीज दिमाग में आती है, चाहे काई मैया को कितनों भी गोरो लाला है, चाहे काई मैया को बस यही सोचती है कि शायद हमारे छोटे से बाल गोपाल को नजर लग गए। अब तो मैया महाराज कभी राई लावे, कभी कुछ करे, कभी बाती बना के लावे, लेकिन ठाकुर जी को तो कोई असर ही नहीं हो रहा। तो गोपी कहती मैया आज कोई गोपी तो नहीं आई। बोली नहीं गोपी तो नहीं आई, तो फिर ये लाला रो क्यों रहा है। बोले पता नहीं, अरे क्या बताऊं जितना चुप करूं उतना ही रोवे। तो मैया को याद आया, बोले हाँ अरे एक सांपन वारो बाबा आयो, पर मैंने तो वहां को दर्शन ना ही कराया। तो गोपी कहती मैया शायद कुछ झाड़ा वाड़ा लगा दे। तो मैया को समझ में आई, बोले हाँ अभी वो यही कर होगा, क्योंकि उसने बोला था दर्शन करके जाऊंगा, तो तू जल्दी जा उसको पकड़ के ला। तो गोपी दौड़ी दौड़ी गई, भगवान शिव अपना आसन लगा के बैठे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो मैया कहती बाबा बाबा अरे जल्दी चलो नंद भवन में, मैया बुला रही है। भगवान कहते कौन मैया। बोले अरे वही जिनके यहां से आप आ रहे हो। बोले वाह मैया के हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों बाबा, अरे बुला रही है। बोले अब तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। अरे बाबा चलो, हमारो ठाकुर हमारो लाला छोटो सो बड़े जोर के साथ रो रहा। अरे महाराज विनती कर रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ। तो भगवान शिव को तो मौका चाहिए था, तो उठे बोले चल ठीक है तुम इतना कह रही हो तो हम चलते हैं। तो भगवान गए, तो मैया गोदी में लेके खड़ी है, भगवान शिव आए हैं। तो देखिए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कह रहे हैं, राजन भगवान शिव कह रहे मैया जल्दी ला हमारी गोदी में दे दे। मैया कहती अरे ओ बाबा दूर दूर रह दूर, देख दूर से देख ले, और तेरे को कुछ झाड़ा वाड़ा आता है तो वहीं से मंत्र मार दे। बोले देख मैया जब तक गोदी में नाए देगी तब तक तेरा लाला ऐसे ही रोएगा। अब मैया कह रही अच्छा बाबा चल ठीक है, पहले तू अपने सांपन के मुंह परे कर, परे को कर ले। अरे मेरा छोरा डर जाएगा। तो भगवान बोले ठीक है मैया, वैसे तेरा लाला तो जगत को बनाने वालों है, सृष्टि को निर्माण करने वालों, यूं कौन से डरे मैया। तो मैया ने डर डर के बोले हाँ चल ले। अब डरते डरते फिर पीछे को ले लिया, बोले ऐसे कर रही है, बोले ले बाबा अब दर्शन कर ले। बोले ना मैया, जब तक गोदी में ना देगी ना तब तक चुप ही नहीं होएगा। अब मैया ने डरते डरते दे दिया, और जैसे ही भगवान शिव की गोदी में भगवान श्री कृष्ण गए महाराज, जोर जोर से हंसने लगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की
जय।
जैसे ही गोद में गए जोर जोर से हंस रहे महाराज। अब तो ठाकुर जी हंसे और मैया ने झट से गोदी में से खींच लिया। अब मैया की गोदी में गए तो जोर जोर से रोने लगे। मैया बड़ी परेशान, मैया कहने लगी बाबा अब तो तू कोई जादू टोना जाने और लगे मेरे छोरा पे जादू टोना कर दी। अब मैया ने फिर से दिया शिवजी की गोदी में तो ठाकुर जी हंसने लग जाते। अब तो महाराज मैया की गोदी में जाएं तो रोने लगे और भगवान शिव की गोदी में जाएं तो जोर जोर से हंसने लगे। मैया कहती है बाबा कोई ऐसा समाधान बताओ कि मेरो लाला जब मेरी गोदी में आवे तो जोर जोर से हंसने लगे। भगवान शिव मालूम क्या कहते हैं, बोले मैया अगर तू चाहती है तो तेरे को एक काम करना होगा कि जब जब तेरो लाला स्नान करे वो जो जल बचे उस जल से तू मुझे स्नान कराएगी तो तेरा लाला हमेशा ऐसे ही हंसेगा मैया। तो संतों का मानना है कि नंद भवन के अंदर भगवान शिव की स्थापना करवाई जाती है और जब भी ठाकुर जी को स्नान कराया जाता था तो उस जल से भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ाया जाता था। तो मैया बड़े भाव के साथ ठाकुर जी का दर्शन कराती है भगवान शिव को, और जब देवताओं ने देखा है कि आज भगवान ने भगवान का दर्शन किया है तो ब्रह्मांड में पुष्प लेकर के खड़े हो जाते हैं और पुष्पों की बारिश होती है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की
जय।
लेकिन भगवान के देखो दुश्मनों की कमी नहीं है। भगवान को मारने के लिए कंस ने एक राक्षस भेजा शक्तासुर, जो भगवान को सकट से आके दबाने लगता है। भगवान ने अपने दाहिने चरण का स्पर्श किया और भगवान के हाथों शक्तासुर नाम का उद्धार होता है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की
जय।
अब तो महाराज एक दिन मैया यशोदा अपने कान्हा को दूध पिलाती है तो एक और राक्षस आता है जिसका नाम था तृणाव्रत। जैसे आंधी आती है तूफान आता है तो तूफान का रूप बना के लेके गया और ठाकुर जी को उड़ा के लेके गया। भगवान आराम से उड़ते जा रहे हैं, बोले वाह मामा जी ने हवाई जहाज भेजा है, अरे वाह मामा जी। अब तो ठाकुर जी आसमान में उड़ते जा रहे हैं और तृणावत के लिए भगवान ने इतना वेग बढ़ा लिया, ठाकुर जी वेग बढ़ा लेते हैं और यहां तृणाव्रत नाम के राक्षस का भगवान के हाथों उद्धार होता है। नाना प्रकार के राक्षस भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आते हैं, कभी कोई आता कभी कोई आता, धीरे धीरे समय बीतता है। देखो ठाकुर जी का जब जन्म हुआ है तो उस उत्सव में मैया नामकरण कराना भूल गई, कभी लाला कहती गोविंद कहती कभी कुछ कह देती। तो एक रोज नंद बाबा की भेंट गर्गाचार्य महाराज से होती है। गर्गाचार्य महाराज जी का आगमन होता है नंद भवन में और उनके द्वारा नामकरण होता है। महाराज कहते हैं देखो कहां हुआ था ठाकुर जी का नामकरण, बोले गौशाला के अंदर। आज हम नामकरण करवाते हैं तो गौशाला का तो विचार ही नहीं आता, बैंक्वेट हॉल में जाएंगे, होटलों में जाएंगे, पर ये विचार नहीं करते कि कोई भी ओकेजन हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, अगर हम उसको गौ माता के साथ मनाएं तो 33 कोटि देवता उस जो भी आप इवेंट करोगे उसका दर्शन करेंगे। और देखो गैया मैया को कितना अच्छा लगेगा कि हाँ इनको भी हमारा ख्याल है। लेकिन गौशालाओं में कोई नहीं जाता। आप मैया यहाँ कथा श्रवण करने आती हैं, यहाँ इस पांडाल में कुछ मैयाएं हैं जो गौशाला में जाती हैं और वहां जन्मदिन अपने बालकों का मनाती हैं। तो देखो मैयाओं के हाथ में ही है। अगर मैयाएं बालकों को कथा में लाएंगी तो कहते हैं कि एक पुत्र का जीवन मैया के हाथ में। अगर मैया चाहे तो अपने बालक को ज्ञानी बना सकती है। अगर ज्ञान की चर्चा उसके साथ होगी तो वो ज्ञानी बनेगा। अगर वो हरि चर्चा सुनेगा तो हरि कृपा होगी। और ना जाने कौन सी मैया का कौन सा भक्त ऐसा निकल जाए जो पता नहीं गौ भक्त बन जाए। तो इसीलिए मैयाओं के हाथों में है बालकों का जीवन। कोई भी आप कार्यक्रम कर रहे हो तो कोशिश करो कि अपनी गैया मैयाओं के साथ उस कार्य को संपूर्ण कर सको। तो यहां जो मैयाएं बैठी हैं, जो कथा श्रवण कर रही हैं, वो तो ये कार्य कर सकती हैं। हाथ उठाओ, कौन कौन करेंगी? चलो, परंतु बहुत अच्छी बात है, दो चार करेंगी तो दो चार उन्हें देख के कुछ तो उन्हें समझ में आएगा। तो कोई भी कार्यक्रम हो आप गैया मैया के साथ मनाएं, वहां जाके उनके साथ अपना समय निकालें, मैयाओं की सेवा करें। आज गौशाला के अंदर गर्गाचार्य जी महाराज ने ठाकुर जी का नामकरण किया है और कहते हैं महाराज जो रोहिणी के पुत्र हैं वो बल में अधिक होने के कारण उनका नाम बलराम पड़ा है, और जो यशोदा के पुत्र हैं कृष्ण वर्ण होने के कारण, श्वेत वर्ण होने के कारण, पीत वर्ण होने के कारण इनका नाम कृष्ण होगा। वैसे तो अनेकों नाम होंगे, कोई कृष्ण कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, आदि आदि नाम इनके होंगे। आज तो इस तरह से गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया है। धीरे धीरे महाराज समय बीता है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन जैसे मैयाएं अपने बालकों को, छोटे छोटे बालकों को कहती है ना कि बेटा ये तेरी आंखें हैं, ये तेरा मुख है, तो मैया अपने लाला को इस तरह से बता रही है। अब तो ठाकुर जी जब भी मैया पूछती बोले कान्हा तेरी आंखें कहाँ है, तो अपना हाथ रखते और कहते मैया ये मेरी आंखें हैं। अब तो गोपियों को पता चला, गोपी आती है और कहती है मैया हमने सुना है कि तेरो कान्हा है। वो बड़ा समझदार हो गया। तो मैया कहती है हाँ गोपी बड़ा समझदार है। तो गोपी आती है ठाकुर जी के पास तो कहती है बोले अच्छा कान्हा ये बता तेरी आंखें कहाँ है। तो ठाकुर जी अपनी उंगली उठाते हैं और आंखों के पास रखते कहते ये मेरी आंखें हैं। बोले मुख कहाँ है, तो मुख पे हाथ रखा बोले ये मेरा मुख है। हाथ कहाँ है, तो हाथों पे दूसरा हाथ रखा बोले ये मेरे हाथ है। तो गोपी बड़ी खुश होती बोले वाह हमारी मैया तो सच बोले, और सच भी कान्हा इतना समझदार है। तो एक गोपी खुद को थोड़ा ओवर स्मार्ट समझती है। बहुत सी मैया होती है ना खुद को बड़ा समझती है, हाँ बस हम ही हमें और कोई नहीं। तो गोपी आई बोले अच्छा ये बता कि तेरे कान कहाँ हैं। तो अब तो ठाकुर जी विचार करने लगे बोले अगर इनको कान पकड़ के बताऊं तो मैया को जाके बोलेगी बोले तेरो काना हमारे सामने कान पकड़े, और अगर ना बताऊं तो कह देंगी तेरे कन्हैया को तो कछु ना आवे। तो मैया गोपी, तो आज ठाकुर जी गोपी के पास गए और इशारा करते बोले हाँ थोड़ा सा झुक जाओ। गोपी झुकी, ठाकुर जी ने अपना छोटा सा हाथ उठाया और गोपी के कान को पकड़ के ऐसा घुमाया और कहते ये कान है। तो गोपी खुश भी हो रही है, बोले हाँ कन्हैया तू तो सच में ही समझदार है। तो नाना प्रकार की लीलाएं ठाकुर जी कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक रोज नंद बाबा जमुना जी में स्नान करके आए। और देखो नंद बाबा का ये नियम था कि नित्य प्रतिदिन वो शालिग्राम जी का पूजन करते थे। जैसे हम अपने ठाकुर जी की सेवा करते ना, वैसे वो शालिग्राम जी की सेवा करते थे। तो एक दिन जब आए स्नान करके, तो शालिग्राम जी का पंचामृत से स्नान कराया। कभी दूध डालते हैं, कभी दही डालते हैं, कभी घी डालते हैं, कभी शहद डालते हैं। तो ठाकुर जी बैठे बैठे देखते हैं और बड़े खुश हो रहे हैं, वाह। तो नित्य प्रतिदिन का जब यह नियम था, तो एक रोज आए तो भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पीछे पीछे चल दिए। अब नंद बाबा ने देखा तो कहने लगे, बोले लाला तू पूजा घर में मत आइयो, अभी तूने स्नान नहीं किया। तो ठाकुर जी विचार कर रहे, बोले भगवान को ही मंदिर में नहीं आने दे रहे। तो जैसे ही नंद बाबा गए तो ठाकुर जी दरवाजे पर बैठ गए। अब फिर से देखा कि पंचामृत से स्नान कराया शालिग्राम जी को, और उसके बाद में नेत्र बंद करके कुछ भक्तों का नियम होता है कि वो माला फेरते। आप मैयाओं को भी कहा गया था कि यहां जो कथा श्रवण करो उसके बारे में चर्चा करो और भजन करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी से भजन करना शुरू करोगे तब जाके थोड़ा थोड़ा मन भजन में लगना शुरू होगा। तो भजन करना शुरू कर दिया, झूठी हाँ मत भरना, अगर नहीं करते हो तो करना शुरू करो। और आज नंद बाबा अपने नेत्र बंद करते हैं, कुछ भक्त नेत्र बंद करके भजन करते हैं। तो ठाकुर जी ने देखा, बोले बाबा के तो नेत्र बंद है, तो घुटमन घुटमन चलते चलते वहीं पहुंच गए और शालिग्राम जी को हाथ में उठा लिया और हाथ में उठा उठा के उन्हें घुमा घुमा के देख रहे। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि शालिग्राम जी को भगवान श्री कृष्ण अपने मुख में रख लेते हैं। अब तो नंद बाबा ने अपना पूजा आरंभ किया और विश्राम कर दिया, उसके बाद में हाथ जोड़े और जैसे ही हाथ जोड़ के आंखें खोली तो सामने भगवान नहीं है। अब दाएं देखा तो कोई नहीं, समक्ष देखा कोई नहीं, पीछे देखा कोई नहीं, अपनी बाईं ओर देखा तो ठाकुर जी बैठे और कहते, बोले लाला मैंने तेरे को मना किया था पूजा घर में नहीं आना, फिर तुम क्यों आए? बोले मेरे शालिग्राम जी को देखा, मेरे भगवान को देखा। बोले बोले लाला मुख से हा ना तो कर। बोले अब बोले कैसे, मना कर रहे। तो नंद बाबा ने देखा, बोले आज तो कन्हैया के गाल कुछ मोटे मोटे हो। बोले मुख में क्या है? बोले अब तो महाराज नंद बाबा समझ गए कुछ गड़बड़। अब तो जैसे ही नंद बाबा ने देखा तो ठाकुर जी की तरफ उनके गाल के समीप जाके हल्का सा गुचका दिया और जैसे ही हल्का सा झटका दिया शालिग्राम जी, लाला तूने ये क्या कर दिया, अरे मेरे शालिग्राम जी को मुख में रख लिया, अरे अब तो मेरे भगवान मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। आवाज लगाई, अरे ओ यशोदा अरे जल्दी आ। मैया दौड़ी दौड़ी आई, अजी का भयो? बले देख तेरो लाला दिन प्रतिदिन सैदान हो तो जा रहे हो। बले याने हमारे भगवान को अपने मुख में रख लिया। मैया लाला को उठा रही है और ठाकुर जी को जब भी थोड़ी सी डांट पड़े तो भगवान रोने लग जाए, मैया का दिल पिघल जाए। बोले लाला रो मत, कोई बात ना। मैया अंदर ले गई, शालिग्राम जी को स्नान कराया, भाव के साथ क्षमा याचना कर रहे हैं नंद बाबा। और उधर यशोदा मैया कह रही है, लाला तूने अपने बाबा के देवता को अपने मुख में काहे को रखो? तो मालूम है क्या कह रहे हैं? बोले मैया हम नित्य प्रतिदिन देखते थे कि पंचामृत से स्नान करा रहे, तो हमने सोचा ये बड़े मीठे हो रहे होंगे, तो इसलिए हमने अपने मुख में रख लिए। तो चिल्ला रहे नंद बाबा, तुमने कान्हा को बिगाड़ रखा है। कहते ना कि मैयाएं बेटों को बहुत प्रेम करती हैं। मैयाओं के लाडले बेटे होते हैं और पिताजी की लाडली बेटियां होती है। तो मैया यशोदा कह रही है, जी इतनो काय को चिल्ला रहे हो, कोई बात नहीं, रसगुल्ला समझ के रख लिए, अरे जाने भी दो। तो मैया यशोदा ठाकुर जी को कह रही है, लाला देख इतनी शैतानी मत किया कर। ठाकुर जी को स्नान कराती हैं, क्योंकि पूरे वस्त्र सान दिए ठाकुर जी ने, गंदे कर दिए। मैया का भाव देखो, आज ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही हूं, ठाकुर जी का श्रृंगार महाराज ऐसा किया कि स्नान कराने के बाद मोर पंख लगाया, पीताम्बर पहनाया, पाँव में छोटी छोटी सी पायल पहना दी और हाथों में छोटे छोटे से कंगन पहना रही है। और ऐसे भाव जगा मैया का, ऐसी लगन लगी कि जोर जोर से तालियां बजाने लगी। और ठाकुर जी को तो नाचना इतना पसंद है कि जैसे ही मैया की ताली बजी तो ठाकुर जी अपने छोटे छोटे पांव से नृत्य करने लगे। ये है महाराज भगवान, ये है मेरा ठाकुर, जो थोड़े से भाव के ऊपर रीझ जाए, नाचने लग जाए। गोपियां ठाकुर जी को थोड़ी सी छाछ के ऊपर नृत्य करवाने लग जाती, बोले कन्हैया तेरे को थोड़ा सा माखन देंगी, थोड़ा सा नाच के दिखा दे। संतों ने गाया है, भक्तों ने गाया है और कहा है, प्रभु कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाए निरंतर ध्यावे, ताही अखंड अनंत अनादि अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रहे पचिहार को पुनि पाल न पावे, और ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। जिसका पार शेष महेश गणेश दिनेश नहीं पा सके, जिनका बखान वेद पुराण नहीं कर सके, वो ठाकुर जी थोड़ी सी छाछ पे नाचते थे। आइए भाव के साथ ठाकुर जी को मनाते हुए चलेंगे और भाव के साथ गाएंगे, हे बिहारी जी। वैसे तो वो समय आ गया जो तुम बिन एक पल नहीं निकलता था, और आज सिर्फ इतनी कृपा करना कि आपका दर्शन हो। ओ मेरे बाकी बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए। हे बिहारी जी, भाव के साथ गाइएगा और ठाकुर जी को कहिएगा कि रहा नहीं जाए, कुछ कहा नहीं जाए। ओ मेरे बाकी बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए। गाइए भाव के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है क्या, ओ मेरे बाकी बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए।
मेरे बाकी बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए।
मेरे बाकी बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए।
मेरे बाकी बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए।
ओ रहा नहीं जाए, कुछ कहा नहीं जाए।
रहा नहीं जाए, कुछ कहा नहीं जाए।
कहना है भाग के साथ ईश्वर,
रहा नहीं जाए, कुछ कहा नहीं जाए।
रहा नहीं जाए, कुछ कहा नहीं जाए।
अच्छा गोपाल जी, किस किस मैया लाई हैं, कौन कौन मैया लाई गोपाल जी? गोपाल जी लाइन उठाइए हाथ जो भी लाइन और कह दीजिए अपने ठाकुर जी को। एक भैया जी यही कथा में आगे ही बैठे हैं, हमारे पास जाके खड़ी होगी और कहती तुम्हारे ठाकुर जी को लेके ही जाऊंगा। मैया हम तो एक मिनट भी नहीं रह सकते, आप हमारे ठाकुर जी को लेके हमारा क्या होगा। तो कह दीजिए ठाकुर जी को, हे प्रभु
अब मैं कब तक करूं इंतजार, अब मैं कब तक करूं इंतजार, तुम्हें बिन रहा नहीं जाए मेरे वाकई बिहारी सरकार, तुम्हें बिन रहा नहीं जाए।
भाव के साथ तालियां बजाते हुए
जब से देखी प्यारी सूरत,
जब से देखी प्यारी सूरत,
हे मेरे मालिक जब से तेरी उंगली पकड़ी है तब से और किसी की सूरत भाती ही नहीं।
ओ जब से देखी तेरी सूरत,
जब से देखी तेरी सूरत,
हुई नहीं दुनिया की जरूरत,
हुई नहीं दुनिया की जरूरत,
दुनिया की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं, परंतु करना क्या पड़ेगा, बिहारी जी की शरण में खुद को समर्पित करना पड़ेगा।
हुई नहीं दुनिया की जरूरत,
हुई नहीं दुनिया की जरूरत,
मानो कहना चाहती हूँ
ओ हमको तुमसे हो गया प्यार, मुझे तुमसे हो गया प्यार, तुम्हें बिन रहा नहीं जाए
मेरे वाकई बिहारी सरकार, तुम्हें बिन रहा नहीं जाए।
ओ मेरे वाकई बिहारी सरकार, तुम्हें बिन रहा नहीं जाए
मेरे वाकई बिहारी सरकार, तुम्हें बिन रहा नहीं जाए।
तन भी दूषित मन भी दूषित,
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 हो ही गया जीवन भी दूषित,
हो ही गया जीवन भी दूषित।
लेकिन मेरे प्यारे अगर आपकी कृपा हो जाए,
ओ मुझे दिल से लगा ले दिलदार, मुझे दिल से लगा ले दिलदार, तुम बिन रहा नहीं जाए
मेरे वाकई बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए।
ओ मेरे वाकई बिहारी सरकार,
समापन की ओर जा रहा है,
की बीत चली जीवन की घड़ियां,
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 तरस रही दर्शन को अखियां,
तरस रही दर्शन को अखियां,
तरस रही दर्शन को अखियां,
तरस रही दर्शन को
ओ मेरा सुना हुआ संसार, मेरा सुना हुआ संसार, तुम बिन रहा नहीं जाए
मेरे बाके बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए
ओ मेरे बाके बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए
मेरे बाके बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए।
दर्श बिना सुना है जीवन,
दर्श बिना सुना है जीवन,
दर्श बिना जीवन है सोना,
दर्श बिना जीवन है सोना,
नहीं मिलने का दुख है दूना,
नहीं मिलने का दुख है दूना,
नहीं मिलने का दुख है दूना,
नहीं मिलने का दुख है दूना।
ओ पागल की प्यारी यार,
ओ
पागल की प्यारी यार, तुम बिन रहा नहीं जाए
मेरे बाके बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए
ओ मेरे बाके बिहारी लाल, तुम बिन रहा नहीं जाए
मेरे बाके बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए
रहा नहीं जाए कुछ कहा नहीं जाए
कुछ कहा नहीं जाए
ओ रहा नहीं जाए कुछ कहा नहीं जाए
रहा नहीं जाए कुछ कहा नहीं जाए।
हमको तुमसे हो गया प्यार, तुम बिन रहा नहीं जाए
मेरे बाके बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए
ओ मेरे बाके बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए
मेरे बाके बिहारी सरकार,
ओ तुम बिन रहा नहीं जाए।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की
जय,
श्रीमद् भागवत महापुराण की
जय,
श्री सद्गुरुदेव भगवान की
जय।
आइए ठाकुर जी के चरणों में लगन लगाते हुए, कथा की ओर ध्यान लगाते हुए, श्री सुखदेव जी महाराज जो परीक्षित जी को कथाएं श्रवण करा रहे हैं, भगवान के बालपन की जो लीलाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण थोड़ा थोड़ा बड़े होने लगे हैं और भगवान के छोटे छोटे मित्र बनने लगे हैं, तो भगवान अपने मित्रों के साथ, मधु मंगल के साथ, श्री दामा जी के साथ में नित्य प्रतिदिन खेलते थे। तो भगवान को माखन तो पसंद है ही, परंतु भगवान के जो मित्र हैं मधु मंगल, वो बड़े गरीब थे, तो कन्हैया को कहते, बोले कन्हैया हमें माखन बड़ा पसंद है। तो ठाकुर जी कहते हैं, बोले अगर तुम्हें इतना माखन पसंद है तो तुम गोपियों से ले लिया करो। तो कहते हैं, बोले भैया एक दिन दे देंगी, दो दिन दे देंगी, पर रोज रोज तो कोई नहीं देता। तो ठाकुर जी कहते हैं, बोले तुम एक काम करो, अगर वो राजी से ना दे तो जबरदस्ती ले लिया करो। बोले हाँ, तू हमें पिटवा और दे। तो बोले नहीं नहीं, तुम ऐसे माखन खा सकते हो। तो बोले कोई और रास्ता है। बोले हाँ, तुम गोपियों के यहां चोरी कर लिया करो, अगर तुम्हें कोई राजी से ना दे। तो भगवान को मालूम है क्या कहते, बोले हाँ हमें चोर और बना दे। तो भगवान जब इतना बोल दे तो ठाकुर जी को मधुमंगल कहता है, बोले एक काम कर, तू ही चोरी करके दिखा, फिर हम भी चोरी करने लग जाएंगे। तो भगवान एक मंडली बनाते हैं, कोई ग्रुप होता है जैसे, वैसे एक मंडली बनती है, तो उसका नाम मालूम क्या रखते हैं, बोले इसका नाम हम रखेंगे बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल, और उसके अध्यक्ष बना दिए गए भगवान श्री कृष्ण। अब तो पूरा ग्रुप तैयार है। अब तो महाराज वो मंडली इतनी चली ब्रज में, इतनी चली कि सारे ब्रज में शोर हो गया, यशोदा मैया को लाला चोर है। ओहो, अब तो जिस भी गोपी के घर में ये सुनने को आए कि उसके घर में सुंदर सा माखन है, बस पूरी मंडली वही पहुंच जाती। मैया के पास नित्य प्रतिदिन शिकायतें आने लगी। गोपियां कहती, मैया तेरो कन्हैया हमारे माखन को खावे। मैया कहती, मेरे घर में 9 लाख गैया मैया है, मेरो कन्हैया माखन खाने तुम्हारे यहां जाएगो। बोले मैया और तो और, जब हम माखन बेचने जाती है ना तो हमारी मटकी फोड़ते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं देखे तो कोई नहीं दिखता, कहां बैठे रहते हैं, बोले कदम के पेड़ के ऊपर, और मुंह बना बना के कहते हैं, बोले बहुत माखन बेचती हो, कभी खुद भी खा लिया करो। मैया बड़े परेशान है। कोई गोपी कहती, बोले मैया मेरी सासू मां भी लड़ती है मेरे साथ में, बता मेरी क्या गलती है। तो एक गोपी बड़ी तेज सी आई, बोली आज ना ये मैया तो मानती नहीं है। मैया कहती, अगर मेरे कन्हैया को चोर साबित करना है तो पहले सबूत लाओ। अब बात भी सही है, जब तक सबूत नहीं होगा तो मैया मानेगी कैसे कि यहां चोरी करता है। तो गोपी वहां से कह के चली गई, बोले अब ठीक है, जब भी आएंगे तो चोर को पकड़ के लाएंगे। मैया बोली हाँ ठीक है, जा जा, गोपी चली गई। अब तो गोपियां नित्य प्रतिदिन बात करती है कि कैसे कन्हैया को पकड़े। एक दिन गोपी पानी भरने गई तो अपनी दूसरी सखियों को बोली, बोले आज ना कन्हैया को पकड़ने। बोले कैसे पकड़ेंगे? बोले मेरे घर में आज बहुत अच्छा माखन जमा है। तो ठाकुर जी की मंडली वहीं से थोड़ी दूरी पे थी, सारी बातें सुन रहे। बोले आहा, ताजा ताजा माखन की बातें हो रही है, तो आज तो चोरी इसके घर में पक्का। गोपी को पता है कि हमारी बातें वहां तक पहुंच रही है। बोले ठीक है, जमाओ माखन, हम भी देखेंगे कैसे माखन बचा के रखोगी। इधर गोपी चली गई। अब मालूम है गोपी कितनी तेज, पूरे घर में माखन की मटकियां भर भर के टांग दी, और जितनी भी मटकियां है उन सब के नीचे एक एक घंटी लटका दी। जब भी कन्हैया आएगा मटकी फूटेगी, घंटी बजेगी, और हम क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। दूसरी गोपी को बोल दिया, बोले मैं घर में छुप जाती हूं, तू बाहर से कुंडी लगा दे, उन्हें क्या मत पता चलेगा। अब तो पूरी तैयारी है चोर को पकड़ने की। जितनी वहां मटकी थी सबके नीचे एक एक घंटी लटका दी। गोपी अंदर छुप गई और बाहर से दूसरी गोपी ने दरवाजा बंद कर दिया। ठाकुर जी आ रहे हैं अपनी मंडली के साथ में, लगा कि दरवाजा बंद है, शायद पानी लेने के लिए चली गई। दरवाजा खोला, ओहो महाराज क्या दृश्य है, जितनी भी मटकी सबके नीचे एक एक घंटी। बोले देखा गोपी कितनी तेज है, हमें पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो भगवान के सखा कहते, बोले लाला अब क्या होएगा? बोले अब कैसे खाएंगे माखन? तो ठाकुर जी कहते, चिंता मत करो। तो भगवान ने अपने सभी सखाओं को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनके ऊपर से घंटी के पास पहुंच गए। घंटी को मालूम क्या कहते, घंटी को बात कर रहे हैं, बोले सुन घंटी, आज तुझे बजना नहीं है, और अगर आज तू बज गई तो फिर देखना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो घंटी कहती, ठीक है प्रभु आप भोग लगाइए, मैं नहीं बजूंगी। अब भगवान ने मटकी को स्पर्श किया तो घंटी नहीं बजी, क्योंकि मना किया था। अब भगवान ने मटकी के ऊपर से पात्र हटाया तो भी घंटी नहीं बजी। अब मटकी में हाथ डाला तो भी नहीं बजी, मटकी के अंदर से माखन निकाला तो भी घंटी नहीं बजी। अब जैसे ही भगवान ने अपने मुख में माखन ढाला घंटी, और जो ही घंटी बजी गोपी दौड़ी दौड़ी आई, ठाकुर जी के सारे सखा नीचे से हट गए, भगवान मटकी को पकड़ के लटके रहे, कोई सखा नहीं दिखा। बोले आज आ जा, तेरी मैया बहुत उल्हाने दे कि हमारा छोरा तो चोरी ना करे, आज चोरी भी बताऊंगी और चोर को भी पकड़ के लेके जाऊंगी। नीचे आ। जैसे तैसे ठाकुर जी को उतारा, लेके चल दी। भगवान दरवाजे तक पहुंचे, बोले रुक पहले घंटी से तो बात कर लो। बोले घंटी से बात करेगा? बोले हाँ। घंटी के पास बोले, बोले हाँ अब बता, मैंने तेरे को मना किया था तू बजी कैसे? घंटी डर गई, मालूम है क्या कहती? बोले प्रभु देखो आपने बोला था कि मेरे को बजना नहीं है, तो जब आपने स्पर्श किया मैं बजी? बोले नहीं। जब आपने पात्र हटाया तो भी मैं नहीं बजी ना? बोले नहीं। जब आपने मटकी में हाथ डाला तो भी मैं नहीं बजी? बोले सही बात। आपने प्रभु मुख में भोजन डाला, मक्खन डाला, तो मैं बज गई, मालूम है क्यों? क्योंकि प्रभु आप ही तो कहते हो। बोले जब जब मुझे भोग लगाया जाए तब तब घंटी बजा के भोग लगाना चाहिए, तो प्रभु आप बताओ कि मैं कैसे रुक जाती, इसीलिए मैं। ठाकुर जी बोले अरे आज तो घंटी तू भी धोखा दे गई, अब मैया की मार से कोई नहीं बचा सकता। गोपी बोली हाँ महाराज होगी बात घंटी से? बोले हाँ। अब सोच रहे अब क्या करूं, अब तो मैया के पास लेके जाएगी और मैया की जो छड़ी है उससे कोई नहीं बचा सकता। गोपी ने लंबा सा घूंघट लगाया और चल दी। ठाकुर जी के सखा भी आ गए, बोले आज तो अध्यक्ष ही पकड़े गए तो हमारी भी खैर नहीं, हाथ पकड़ लिया, ये लंबा सा घूंघट लगाया और चल दी। देखो पहले ब्रज में मैयाएं लंबा सा घूंघट लगाती थी जब भी घर से बाहर निकलती थी, परंतु आज आजकल मैयाएं घूंघट नहीं करती, और घूंघट करती भी हैं तो उनका घूंघट करना और ना करना बराबर। वैसे तो इतना मॉडर्न जमाना आ गया है कि मैया कहती है कि अगर घूंघट कर लिया तो फिर हमारा सुंदर सा चेहरा कौन देखेगा, तो मैया घूंघट लगा के गई ताकि किसी को दिखे ना कौन सी गोपी है। और ठाकुर जी के सखा पीछे पीछे चल रहे हैं, ठाकुर जी की कलाई पकड़ के रखी है। थोड़ी दूरी चली, ठाकुर जी के सखा इशारा करे हाँ ठीक है। बोले हाँ ठीक है, क्या करोगे? बोले समझ में नहीं आ रहा। तो मधुमंगल को इशारा करते, बोले तू आ। तो गोपी ने तो घूंघट लगाया ही था, तो ठाकुर जी गोपी को बोलते, गोपी मेरी ना कलाई में बड़ा दर्द हो रहा है, तू एक काम कर मेरा ये हाथ छोड़ और ये वाला पकड़ ले। अब गोपी बेचारी भोली भाली थी, अब जैसे ही ठाकुर जी ने इतना बोला तो ये वाला हाथ छोड़ा, और जो ही हाथ छोड़ा सो मधुमंगल के हाथ गोपी के हाथ में दिया और ठाकुर जी वहां से दौड़े दौड़े मैया के पास आ रहे, मैया की गोद में बैठ गए। मालूम है क्या कहते? बोले मैया एक बात बता, ये गोपी नित्य प्रतिदिन शिकायत लेके आवे, क्या तेरे को लगता है कि मैं चोरी कर सकता हूं? मैया कहती है मेरा लाला तू तो चोरी कर ही नहीं सकता। तो बोले मैया एक बात बता, अगर आज कोई गोपी शिकायत लेके आई तो तू क्या करेगी? मैया बोली आज आने तो दे, मैं देखूंगी कि मेरे लाला को क्यों बदनाम करे। तो मैया को जैसे इतना बोला तो मैया ने जब इतना कहा तो ठाकुर जी कहते, बोले हाँ अब मैया बिल्कुल तैयार, अब कोई टेंशन की जरूरत नहीं। तो ठाकुर जी अंदर अपने कक्ष में चले गए, गोपी आ रही है, ठाकुर जी अंदर विराजमान है, तो गोपी आवाज लगा रही है, अरे ओ कान्हा की मैया, अरे जल्दी बाहर आ। मैया दौड़ी दौड़ी आई, लगता है किसी गोपी को कोई समस्या है शायद इसलिए मेरे पास आ रही। तो मैया बोली हाँ गोपी क्या बात है? बोले आज मैं चोर को पकड़ के लाई हूं, अपने पीछे छुपा के रखा है मधुमंगल को। मैया बोली कौन सा चोर पकड़ के लाई है? बोले देखना चाहती है? बोले हाँ। तो मैया कहती है, गोपी आज कान्हा के बाबा न आए, तो अपना घूंघट ऊपर कर। बोले घूंघट बाद में ऊपर करूंगी, पहले चोर को देख ले। अब धीरे धीरे पीछे से हाथ हटाया और मैया के सामने खड़ा करके कहती, बोले ये देख, ये रहा चोर। मैया बोली, किसको पकड़ के लेके आई है? बोली तेरो ही तो छोरा है। बोली मेरो कन्हैया ना है, तू देख तो सही है कौन। गोपी ने घूंघट उठाया और देखा, ये तो कन्हैया है नहीं। ठाकुर जी अंदर से आए, मैया के पीछे से मुख निकाला, बोले हाँ पकड़ लिया। गोपी सोच रही है, पकड़ा तो मैंने कृष्ण को था, परंतु मधु मंगल कैसे मालूम है? क्या कहते? बोले ठीक है, अगर आगे से ऐसी गड़बड़ की ना, तो आज तो अपने सखा को हाथ दियो है, और अगली बार तेरे खसम को हाथ तेरे हाथ में देके भाग जाऊंगा और तो को पता भी ना चले। गोपी कहती, हाय मैया, आज जाऊं तो कहां जाऊं, किससे शिकायत करूं। गोपी वहां से चली गई, पांव के नीचे से जमीन निकल गई, मानो कहना चाहती हो कृष्ण को कि प्रभु ये जो हम शिकायतें लेके आती हैं, ये जो शिकायत लेके आती है, ये तो मात्र एक बहाना है। उस शिकायत के पीछे जो कारण है, वो तो आपका दीदार पाना है। हमारी आंखें चाहती हैं कि बार बार आपका दीदार करें, आपका दर्शन करें, और बस प्रभु एक बार जिसको आपका दर्शन हो जाए, उसको जीवन में और चाहिए भी क्या। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन नाना प्रकार की कथाएं मैंने आपको श्रवण कराई। आगे भगवान ने एक लीला की है कि भगवान एक रोज जमीन पे खेल रहे होते हैं, तो भगवान एक मिट्टी का डला अपने मुख में रख लेते हैं। ब्रजवासी मैया को आके शिकायत करते हैं, बोले मैया तेरो लाला माटी खावे। तो मैया कान्हा के पास छड़ी लेके जाती है, बोली मुख खोल। तो जैसे ही भगवान अपना मुख खोलते हैं, तो मैया को समस्त ब्रह्मांड का दर्शन ठाकुर जी अपने मुख में कराते हैं। मैया वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर के पश्चात मैया की आंखें खुली तो कहती, बोले लाला मैंने तेरे मुख में अभी कछु देखे। ठाकुर जी सोचते हैं, बोले दोबारा से मैया को अगर वही दृश्य दिखाया तो मैया हमें अपने लाला की तरह प्रेम नहीं करेगी, देवता बना देगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बोले ईश्वर की लीलाओं का वर्णन कहां तक करें, किस किस रूप में करें। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, हो राम न सके नाम गुण गाई, भगवान की
जय।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन कि ऐसा शब्द मेरे पास नहीं है जो भगवान की इन लीलाओं का वर्णन कर सकूं। कहते हैं कि एक रोज मैया जब माखन निकालती थी, तो सुबह का समय था, ठाकुर जी मैया के पास जाते, बोले मैया माखन बाद में निकालना, पहले थोड़ा सा मुझे खिला दे। तो मैया कहती है, बोले कृष्ण मेरे लाला अभी तूने ना स्नान नहीं किया, तू नहाया नहीं, तो पहले मैं तेरे को नहलाऊंगी, श्रृंगार करूंगी, फिर तेरे को कुछ खिलाऊंगी। तो मैया को कहते हैं, बोले नहीं नहीं सारा काम बाद में करना, पहले माखन चाहिए। तो मैया को तो इतना सारा काम करना होता है। तो मैया ठाकुर जी को समझाने के लिए कहती है, बोले लाला देख माखन नहीं, तू माखन की हट छोड़ दे, मेरे को काम करने दे। देख मैं तेरे को वादा करती हूं कि मैं तेरे को चंदा मामा के पास लेके जाऊंगी। तो ठाकुर जी ने जब चंदा मामा का नाम सुना, कई मैयाएं होती हैं बच्चों को बहलाने के लिए कह देती है, तो मैया को कहते बोले मैया अब तो हमें चंदा मामा ही चाहिए। अब मैया ने कह तो दिया, अब चंदा मामा कहां से लाए। तो मैया क्या करती है, परात लाती है। सो परात में जल लिया और जल जैसे ही आया तो चंदा मामा की रोशनी आ गई। तो मैया कहती बोले लाला ये देख तेरे चंदा मामा दर्शन कर ले। पर ठाकुर जी तो ठाकुर जी है, अपना हाथ उठाया और पानी में जो ही मारा सो चंदा मामा तो बिगड़ गए। तो मैया को कहते बोले मैया असली वाले मामा जी चाहिए। अब असली मामा जी कहां से लाए। तो मैया ठाकुर जी को कहती बोले लाला देख तू मेरे कितनों सोनों सो कन्हैया। बोले मैया अगर तूने चंदा मामा नहीं दिए ना तो जा, आज से तुझसे बात करना बिल्कुल बंद। तो मैया कहती बोले जा मैं तो बलराम से बात कर लूंगी, तेरे को नहीं करना तो मत कर। तो ठाकुर जी सोचने लगे बोले अभी बात बन नहीं रही। बोले ठीक है मैया तेरी गोदी में भी नहीं आऊंगा, बोले मैं तो बलराम को बिठा लूंगी। तो कोने में जाके खड़े हो गए और कहने लगे बोले आज से तू हमारी मैया नहीं और हम तेरे कन्हैया नहीं। मैया की आंखों में आंसू आ गए, बोले लाला तेरी सारी बातें ठीक है परंतु ऐसा मत बोल, मैं तो तेरे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, तो तू ऐसा मत बोल। देख देख एक काम कर, माखन की हट छोड़ दे, मैं तेरे लिए एक सुंदर सी बहू लेके आऊंगी। अब जो ही बहू का नाम लिया, अब तो ठाकुर जी मैया को कहते बोले अब तो बहू ही चाहिए। अब मैया बहू कहां से लेके दे। बोले लाला, तो मैया विचार करने लगी, अंदर गई गुड़िया ले आई। तो गुड़िया को कहती बोले ये ले लाला ये रही तेरी बहू। तो गुड़िया को फेंक के मारा, बोले ये वाली बहू नहीं चाहिए, असली वाली बहू चाहिए। अब मैया बहू कहां से लाए। अब मैया विचार कर रही है, बोले लाला अच्छा ये बता कि तेरे को बहू कैसी चाहिए। बोले मैया देख प्यारी सी होनी चाहिए, छोटी सी गोलू मोलू सी होनी चाहिए। और देख बोले तो क्या करेगा। बोले मैया जब भी हम गैया चराने ले जाए ना इतनी सी होनी चाहिए कि अपनी जेब में रख के ले जाए। तो मैया कहती अरे बहू इतनी छोटी सी नहीं होती। तो मैया कहती अच्छा तेरे को बहू चाहिए। तो ठाकुर जी बता रहे बोले मैया मुझे जो बहू चाहिए सुन कैसी चाहिए, और है तो छोटे से पर देखो बहू कैसी बता रहे, सारे लक्षण बता दिए और नाम भी बता रहे, बस सगाई कर दे मेरी उसके साथ, इतना कर दे मैया। ओ प्यारी प्यारी मैया, मैया तू तो बहुत प्यारी है, दुनिया की सबसे अच्छी मैया है, इसीलिए सुन। ओ प्यारी प्यारी मैया कहते हैं कृष्ण कन्हाई, क्या कह रहे मालूम है मैया, राधा से कर दे मैया, इतनी जल्दी में सगाई नहीं करनी, हे मैया थोड़ा समय ले ले पर सगाई करवा दे। ओ प्यारी प्यारी मैया, ओ प्यारी प्यारी मैया कहते हैं कृष्ण कन्हाई, राधा से कर दे सगाई मेरी, राधा से कर दे सगाई।
ओ प्यारी प्यारी मैया, ओ प्यारी मैया कहते हैं कृष्ण कन्हाई, राधा से कर दे सगाई, राधा से कर दे सगाई।
मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैयाओं को ठाकुर जी के इस सगाई की कोई खुशी नहीं। आप अपने बालकों की सगाई करते हो तो कितना कुछ अरेंज करते हो, और जब बात चलती है तो कितनी खुशी होती है। तो यहाँ तो जगत पिता अपनी सगाई की बात करें तो भाव के साथ मीठी मीठी तालियां बजाते हुए भाव के साथ गाएंगे।
बरसाने जाके क्यों ना, बरसाने जाके क्यों ना, मेरी बात चलाई, राधा से कर दे सगाई भैया, राधा से कर दे सगाई।
ओ प्यारी प्यारी भैया कहते हैं किशने कनाई, राधा से कर दे सगाई, कर दे
ठाकुर जी को समझा रही है मैया, तू बड़ा भोला है मेरे कृष्णा,
तू बड़ा भोला है मेरे कृष्णा,
उसकी मीठी बातों में काना न फंसना,
उसकी मीठी बातों में काना न फंसना,
उसकी मीठी बातों में काना न फंसना,
उसकी मीठी बातों में काना न
ऐसी बहु लाखों में होगी,
लाऊंगी ऐसी बहु लाखों में होगी,
ओ तेरी सगाई ऐसी वैसी ना होगी। अरे तू नंद जी को छोरा है, तेरी सगाई में ऐसी वैसी साधारण सी सगाई नहीं होगी, इसीलिए काना हो राधा से कट्टी कर ले, राधा से कट्टी कर ले, इसमें है तेरी भलाई मैया, राधा से कर दे सगाई मैया, से कर दे प्यारी मैया तू मेरे को छोटा समझती है, पर मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया, तो इसीलिए तू मुझे बार बार समझाने की कोशिश मत कर।
बहला हो ना छोटा समझ के,
बहला हो ना छोटा समझ के,
ओ जो कुछ है बोला बड़ी सोच समझ के,
जो कुछ है बोला बड़ी सोच समझ के,
जो कुछ है बोला बड़ी सोच समझ के,
जो कुछ है बोला बड़ी सोच समझ के।
तू तो कहती है और कोई विवाह करवा दूंगी, सुन मैया
मेरी सगाई राधे रानी से होगी,
मेरी सगाई राधे रानी से होगी।
अच्छा आप में से कितने भक्त चाहते हैं कि ठाकुर जी की सगाई राधा रानी से हो? आधी मैयाएं नहीं उठा रही, आप नहीं चाहती, जलन हो रही है? क्यों, जलने की कोई बात नहीं है, अगर आप ठाकुर जी की सगाई करवाओगे ना तो आपके घर में आपके जो छोरा की वो आवेगी, वो वैसी आएगी जैसी राधे रानी, तो इसीलिए खुशी होनी चाहिए। तो ठाकुर जी कह रहे मैया
मेरी सगाई राधे रानी से होगी,
मेरी सगाई राधे रानी से होगी,
वो होगी बहु तो बस राधा ही होगी। हम भी खुशी से गाएं, हम भी खुशी से गाएं, बांटेंगे खूब मिठाई
मैया
राधा से कर दे सगाई, राधा से कर दे सगाई।
ओ प्यारी प्यारी मैया कहते हैं किशन कन्हाई, राधा से कर दे सगाई, राधा से कर दे सगाई।
ओ प्यारी प्यारी मैया, ओ मेरी प्यारी मैया कहते हैं
से कर दे सगाई, राधा से कर दे सगाई।
बोलिए बरसाने वाली की
जय,
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की
जय।
तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित जी मैया को कह रहे हैं बस वाही से ब्याह होना है, तो मैया ठाकुर जी को समझाती है, बोले हाँ तेरी सगाई तेरो ब्याह वही से करवा दूंगी। तो ठाकुर जी को समझाती है, फिर श्रृंगार कराया है, माखन खिलाया है, तो नाना प्रकार की लीलाएं भगवान ने ब्रज की धरा पर की हैं। आगे कथा आती है कि एक रोज मैया ठाकुर जी को उखल से बांध देती है, तो भगवान क्योंकि जगत पिता है तो मैया रस्सी लाती है बांधने के लिए, परंतु जितनी रस्सी लाए मैया उतनी ही रस्सी छोटी पड़ जाए, क्योंकि जो जगत को नचाने वाला है उसको बांधने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। अगर भगवान बंध सकते हैं तो श्रद्धा की डोरी से। जब मैया थक गई, मैया का भाव देखा है ठाकुर जी ने, तो ठाकुर जी मैया के हाथों से बंध रहे हैं, तो संत समाज कहते बोले श्रद्धा की डोरी से हम भगवान को बांध सकते हैं। तो मैया ने आज भगवान को उखल से बांधा, ठाकुर जी घुटमन घुटमन यमलार जुन के वृक्षों के पास पहुंच जाते हैं, और जो ही ठाकुर जी का स्पर्श हुआ वो यमलार जुन के विशाल वृक्ष गिर जाते हैं, दो दिव्य पुरुष निकलते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। भगवान पूछते हैं तुम कौन हो, तो भगवान को अपना परिचय देते हैं और कहते हैं प्रभु आज आपके कारण हमें सदगति प्रदान हुई है, नारद जी के द्वारा हमें शाप मिला था, हम जड़ वृक्ष बन गए, परंतु आपके आज आशीर्वाद से दर्शन से आज हमें मुक्ति प्रदान हो गई। बोले आप बताओ आपको क्या चाहिए? बोले प्रभु नेत्र आपके दर्शन करते रहे, कान हमेशा आपका जो कीर्तन है वो श्रवण करते रहे, जिव्या आपका नाम गाती रहे, और हमारे जो पैर हैं वो आपकी तीर्थ यात्रा करते रहे। कहते हैं विशाल वृक्षों के गिरने की आवाज जब हुई है तो ब्रजवासी आए हैं, आज नंद बाबा ने नंद गांव को छोड़ने का निश्चय किया है। सभी ने नंद बाबा का समर्थन किया है। नंद बाबा के छोटे भैया हैं, उन्होंने बड़ी सुंदर जगह बताई है कि हम वृंदावन में जाकर के रह सकते हैं। तो आज सभी ने नंद गांव को छोड़ा है और नंद गांव के जितने वासी थे वो सभी वृंदावन के लिए चले गए हैं। वृंदावन में जाके सभी रहने लगे हैं। समय बीता है तो भगवान के जो शत्रु हैं, कंस ने यहां एक वत्सासुर नाम के राक्षस को भेजा है जो भगवान के गाय बछड़ों में मिलकर के आ गए। भगवान ने पहचान लिया तो भगवान वत्सासुर का उद्धार अपने हाथों से करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो भगवान श्री कृष्ण और भगवान जी के जो भैया हैं, नाम क्या है, यानी बलराम जी महाराज। तो बलराम जी बड़े हैं तो वो गाय चराते हैं और ठाकुर जी छोटे थे तो वो बछड़े लेके जाते। तो यहां आज एक अघासुर नाम का राक्षस आता है। जब भगवान अपने भैया और सखाओं के साथ जंगल में गाय चराने जाते हैं, अघासुर उस जंगल में विशाल अजगर का रूप बना करके पड़ा है। अब देखो ठाकुर जी के जो सखा हैं वो इतने भोले भाले हैं, आज जो उस अजगर का मुख खुला हुआ है तो कह रहे बोले भैया लगता है कि इस वृंदावन में कोई विशाल मंदिर है, हमें भी इस मंदिर का दर्शन करना चाहिए। तो ठाकुर जी और बलराम जी तो अलग चले गए, बेचारे अंदर जब जंगल में चले गए तो उस मंदिर समझ के अजगर के मुंह में चले गए। अब अजगर को इंतजार है कि जिसको मारने के लिए मैं आया हूं वो तो अभी आया ही नहीं। अब ठाकुर जी ने सभी जगह देख लिया, सखा नहीं दिखे, वो बेचारे अजगर के मुख में गए तो अजगर का जो विष था उसके कारण बेहोश हो गया। अब ठाकुर जी ढूंढते ढूंढते आए, उस अजगर को देखा, अघासुर को देखा है। तो भगवान जैसे ही उसके मुख में प्रवेश करते हैं और जैसे ही उसके कंठ पर जाकर बैठते हैं भगवान, तो आज अघासुर का कंठ अवरुद्ध होने लगा, सांस रुक गया और भगवान ने अपने इस शरीर को बढ़ाना शुरू किया। और जो ही भगवान ने अपनी विशाल देह बनाई है, आज अजगर के मस्तिष्क को भगवान ने फाड़ दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। इधर देखो भगवान ने अघासुर को उद्धार दिया है, उसका उद्धार किया है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, बोले आज हुई घटना मैया यशोदा को एक साल के बाद पता चलती है। भगवान ने मना कर दिया, बोले मैया को मत बताना, मैया सुनेगी तो मैया रुदन करने लगेगी और हमें कहीं नहीं जाने देगी। राजा परीक्षित को कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी ने यहां एक प्रश्न भी किया है, बोले एक साल के बाद क्यों पता चला। बोले जितने भी ग्वाल वाल थे भगवान श्री कृष्ण के, जो मंडली थी, उनमें एक सखा था जिसका नाम था मधुमंगल। मधुमंगल को माखन खाने का बहुत चाव था लेकिन घर में माखन नहीं मिलता था। तो आज एक रोज ग्वाल वाल मंडली जंगल में विराजमान है तो ठाकुर जी अपने सखाओं से कहते कि आज तू मक्खन लेके आना, आज तू लेके आना। तो नित्य प्रतिदिन सखा लेके आते। तो एक दिन मधु मंगल को बोला कि तुम्हें माखन लेके आना है, तो खट्टी छाछ थी उसको लेके आ गया। तो ठाकुर जी पहले मधु मंगल को ग्रहण कराते और फिर उस झूठन को खाते। तो ये घटना ब्रह्मा जी बैठे बैठे देख रहे थे और ब्रह्मा जी विचार करते हैं जो इनके झूठन को खा रहा है ये तो भगवान हो ही नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान के जितने ग्वाल बाल थे, जितने गाय बछड़े थे, ब्रह्मा जी ने सबको चुरा लिया। अब तो महाराज जब सबकी चोरी कर ली, भगवान श्री कृष्ण को पता चला, ओहो ब्रह्मा जी परीक्षा ले रहे हैं, तो स्वयं ब्रह्मा जी का रूप बना करके ब्रह्मलोक भगवान पहुंच गए। ब्रह्मा जी की गद्दी खाली है। अब तो जो द्वारपाल थे उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी तो चले गए परंतु ये कौन है, तो ठाकुर जी बोले बोले हमें तुम्हारे महाराज अंदर जाने दो। अब ब्रह्मा जी का रूप बनाए तो मना कैसे करें, तो ब्रह्मा जी बन के ठाकुर जी सिंहासन पे बैठ गए। समय बीतता रहा, इधर जितनी भी गाय और ग्वाले ब्रह्मा जी ने चुराए थे सेम वही ठाकुर जी ने दूसरे बना दिए। अब तो ब्रह्मा जी ने देखा कि जो मेरे पास है वही ग्वाले और वही गाय आज वृंदावन में घूम रही है। अब तो दौड़े दौड़े ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी गए, द्वारपालों को जाके कहा तो द्वारपाल कहते बोले महाराज कौन हो, किससे मिलना है। बोले हम तुम्हारे महाराज है। बोले हमारे महाराज तो अंदर बैठे। बोले अच्छी परीक्षा ली, पता नहीं कौन से महाराज आ गए, तो आज नेत्र बंद किए हैं और नेत्र बंद करके देखा है तो वो काला काला वो मुरली वाला अपनी दोनों बोहे मटका रहे। बोले हाँ ले लो परीक्षा। आज ब्रह्मा जी ने प्रभु के सामने वंदन किया है, बोले अच्छी गाय अच्छे ग्वाले चुराए, यहां तो गद्दी से भी हाथ धोना पड़ गया। तो यहां ब्रह्मा जी के इस ज्ञान को कराया है कि हां हम ब्रह्म हैं। और यही घटना एक साल के बाद सभी जो ग्वाले वाले हैं वो मैया यशोदा को बताते हैं कि मैया तेरे लाला को अगासुर नाम को राक्षस मारने के लिए आया था। तो मैया को जब एक साल के बाद पता चलती है तो मैया क्या करती है, अपने कान्हा की देखो घटना हुई एक साल पहले, और मैया जो ठाकुर जी की नजर उतार रही है वो एक साल के बाद में। तो ठाकुर जी मैया को बार बार वंदन कर रहे हैं, मैया के भाव को बार बार वंदन कर रहे हैं। देखो जिस गैया मैया को ठाकुर जी ने चराया था, जिसके साथ ब्रज मंडल में ठाकुर जी ने इतनी लीलाएं की थी, आज हम इस अनुष्ठान को उस गैया मैया के लिए कर रहे हैं। परंतु देखिए सब मानते हैं कि गाय हमारी माता है, कहते हैं लोग गाय हमारी माता है, संत ऋषिगण कहते हैं कि गावो विश्वस्य मातर है, गाय हमारी ही नहीं बल्कि विश्व की माता है। अगर आप गैया मैया की सेवा करते हैं तो कितने देवी देवता विराजमान हैं गैया मैया के अंदर, 33 कोटि देवता, यानी 33 कोटि देवताओं की आराधना करने का जो फल है वो गैया मैया की आराधना करने के बाद मिल जाता है। पर दुर्भाग्य संतों ने कहा है बोले गैया मैया तो एक चलता फिरता मंदिर है, क्योंकि मंदिर उसको कहते हैं जहां देवता विराजमान होते हैं, और मैया के अंदर एक नहीं दो नहीं 33 कोटि देवता विराजमान है। अपने भारत देश के अंदर एक दुर्भाग्य की बात देखिए, हमारे इस हिंदू राष्ट्र में, मैया थोड़ा ध्यान से सुने, हमारे इस हिंदू राष्ट्र में हम गैया मैया की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। गौशालाएं किस लिए होती थी, बोले जो मैया अपाइज जो चल नहीं पाती, जो बूढ़ी मैया गैया मैया हो जाती उनके लिए गौशाला होती थी। लेकिन आज गौशाला खोलना भी मजबूरी है, क्योंकि आज जो हम लोग हैं वो गैया मैया को घर में नहीं रख रहे, दूध देगी तब तक गैया मैया रहेगी, वरना सड़कों पे घूम रही है पॉलीथिन खाते हुए। गैया मैया की रक्षा कब होगी, हमारे महाराज श्री ने संकल्प लिया है, लेकिन बिना सहयोग के बिना आप सभी के साथ के गैया मैया की सेवा नहीं हो पाएगी, जो संकल्प है वो पूर्ण नहीं होना हो पाएगा। इसीलिए व्यास पीठ से बार बार मैं अनुरोध निवेदन करती हूं, देखो जो बूढ़ी गैया मैयाएं उनको लोग धक्के देके बाहर निकाल देते हैं, यूं ही सड़कों पे छोड़ देते हैं। विज्ञान मालूम क्या कहता है कि एक हमारी जो गैया मैया है वो धरती का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है, और ग्रहण ही नहीं करती, ऑक्सीजन छोड़ती भी है। और इतना ही नहीं, गैया मैया प्रकृति से अपनी आवश्यकता अनुसार 21% ऑक्सीजन लेती है और उसका 5% यूज करती है और 16% वापस प्रकृति को दे देती है। और एक बात और बताएं, विज्ञान ने यह खुद साबित किया है कि 35% ऑक्सीजन गैया मैया के गोबर से प्राप्त होता है, और हम क्या करते हैं, उस गैया मैया की सेवा तक नहीं कर रहे। कुछ बंधुओं ने माना है, विज्ञान कहती है कि जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है, शिकायत रहती है, 15 से 20 मिनट तक जो गौ माता के ऊपर हाथ फेरते हैं तो ब्लड प्रेशर की शिकायत हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। केवल 15-20 मिनट तक, नित्य प्रतिदिन। यानी मंदिर तो है ही, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम बीपी की इतनी सारी टैबलेट्स खाते हैं, क्या फायदा मिलता है? चंद घंटों के लिए आपको हो सकता है कि उससे आराम मिले, लेकिन फिर से वही शिकायत। इसीलिए देखो कितनी महान हमारी गौ माता है, परंतु आज दर बर भटक रही है, आज खुद के लिए रहने के लिए स्थान ढूंढ रही है। कोई भक्त कहते हैं, कोई संत कहते हैं, अरे गैया मैया सुन, जो तेरे ऊपर जुल्म करते हैं, अरे जो गौ माता पर जुल्म है करते, भला कैसे वो सुख पाएंगे? रोते हुए वो इस जग में आए थे और रोते रोते जाएंगे, जो जुल्म करते हैं मैया के ऊपर। अरे सोचो भला, अरे सोचो भला, इस मूक मैया ने, मुंह से बिल्कुल ना बोल पाती हूं, अरे सोचो भला, इस मूक मैया ने क्या किसी से छीना है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको कुछ ना कुछ देना है। अरे सब देवों की पूज्य है जो, आज वो दर दर धक्के खा रही और अपना पेट भरने की खातिर वो कूड़ा करकट खा रही। अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ ए हिंद के वासी, क्यों गौ माता को भुला दिया? अरे खुद भी खुश ना हो पाया, तूने गौ माता को रुला दिया। अरे सूर्य शर्मिंदा बहुत है मैया, जो तेरे लिए कुछ ना कर पाया। अरे जाग जाओ मेरे हिंदू भाइयों, क्यों माता को आज तुमने सर झुकाया, क्यों माता का तुमने सर झुकाया? आज मैया का अपने बेटों के कारण सर नीचा है। जब आप करने में सक्षम हैं, जिनके पास नहीं है उनकी बात अलग है, लेकिन जो सक्षम है वो तो कर सकते हैं, क्यों अपनी गैया मैया को रुलाने पे तुले हुए हो? जिस गैया मैया को आप छोड़ देते हो, संत कहते हैं देवों में गौ दान की जो महिमा बताई है, गरुण पुराण कहता है कि गैया मैया की पूंछ में स्वयं हनुमान जी का वास है, और मैया की पूंछ को जो सहल आता है, जब मृत्यु आती है और यमलोक जब जाते हैं तो बैतरणी नदी आती है, उसको पार करके यमलोक जाना होता है। जो गैया मैया की पूंछ पे हाथ फेरते हैं उसको यमलोक जाने में आसानी होती है, यानी बैतरणी नदी आसानी से पार हो जाती है, क्योंकि ये जो नदी है इसमें हजारों जीव जंतु हैं जो व्यक्ति को बहुत पीड़ित करते हैं, दूसरा गैया मैया की सेवा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। अपने पितरों को प्रसन्न करना है तो गैया मैया की सेवा कीजिए, और जिसके पितृ खुश हो जाए तो उसके वंशजों को इतना आशीर्वाद देते हैं पितृ, उसको किसी बात की कोई चिंता नहीं होती। परंतु एक और दुर्भाग्य है, जिस मैया को राष्ट्र माता होना चाहिए, जिस मैया की पूजा होनी चाहिए, आज उसके हक के लिए महाराष्ट्र जैसे संतों को कदम उठाना पड़ रहा है। देखो हमारे संविधान में संज्ञाओं को राष्ट्र का प्रतीक या धरोहर बना दिया गया है, उसकी सुरक्षा उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी किसको दी गई? नागरिकों को, प्रशासन को दी गई। उदाहरण दें, राष्ट्रीय ध्वज हो, राष्ट्रीय पशु हो, राष्ट्रीय गान हो, इनका अपमान करेगा तो सजा मिलती है। लेकिन जो गैया मैया है, जो देश की आर्थिक सांस्कृतिक वैज्ञानिक और सामाजिक इन चारों रूप से देश को जो आत्मनिर्भर बनाती है, जो विश्व हमारे इस देश को विश्व गुरु बना सकती है, उस मैया को इस भारत देश में राष्ट्रमाता तक का दर्जा नहीं है। किसके कारण? इसका जिम्मेदार है कौन? इसके जिम्मेदार हम सब हैं। हमने गैया मैया की जो बातें हैं, गैया मैया को हां हमारी माता है, बस इतना ही है कि हमारी माता है, लेकिन माता के लिए एक आपके फर्ज क्या है, आपके कर्तव्य क्या है, वो आपने निभाए होते तो शायद आज गैया मैया की ये हालत होती है। गैया मैया, क्योंकि गर्मी का समय है, जो गैया मैया गौशाला में है वो फिर भी सुरक्षित है, लेकिन जो मैया गौशाला में नहीं है, गैया मैया को प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, आप एक घंटे प्यास सहन नहीं कर सकते। क्या जो मैया सड़कों पे घूम रही है उसको पानी पिलाने वाला कोई है? कोई उसको पूछ सकता है कि गैया मैया तुम्हें भी प्यास लगी होगी? देख के आश्चर्य होता है, बड़ा बुरा लगता है। जितना हो सके गैया मैया को बचाने की कोशिश करो। अगर गाय है तो ही देश है, अगर गाय नहीं है तो देश भी सुरक्षित नहीं है। संत कहते हैं गैया मैया की जो सेवा करेगा, गैया मैया कभी उसका ऋण रखती नहीं है। जितना सेवा करोगे उसका अनंत गुना गैया मैया आपको लौटाएगी। आपने इतनी सारी कथाएं आज के दिन श्रवण करी, आपने देखा कि ठाकुर जी ने गैया मैया की चरण रज को अपने मस्तक से लगाया है। वो तो जगत पिता थे, लेकिन आज हर मंच से बोलना पड़ता है कि गैया मैया की सेवा करो, जितना हो गैया मैया की रक्षा करो। होता क्या है? क्या उन बातों के ऊपर अमल होता है? 33 कोटि देवता विराजमान है, आपको कितनी बार बताया, आपको खुद मालूम है। लेकिन संत कहते हैं, बोले जिस जगह गाय खड़ी होती है ना, जिस जगह मैया चैन की सांस लेती है, वहां के सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं सिर्फ उसके खड़े होने से। 33 कोटि देवता जिसके अंदर विराजमान है, जिस घर में मैया खुशी से रंभाती हो, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, जिस घर में मैया खुशी से रंभाती हो वहां नित्य प्रतिदिन आके देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। इतना ही नहीं, गैया मैया के गले में जब घंटी होती है ना, गैया मैया की जब आरती होती है तो वो घंटी बजने लगती है जिससे मेरा गोविंद प्रसन्न होता है। नित्य प्रतिदिन कहने का अभिप्राय गौ आरती करिए। जो गैया मैया है, जो उसकी सेवा करता है गैया मैया, उसके सारे कष्ट हर लेती है। जो गौ माता के खुर हैं, जो गैया मैया के खुर हैं, उनमें नाग देवता का वास है। और जहां गैया मैया विचरण करती है वहां ना कभी सांप आ सकता है ना कभी बिच्छू आ सकता है। ये हमारे संतों का बखान है। गैया मैया के गोबर से जो उपले बने होते, अगर आप अपने घर में नित्य प्रतिदिन उनको उपयोग में लोगे तो घर का जो नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आएगी। गैया मैया के गोबर के उपलों से गौ माता को अन्नपूर्णा देवी कहा है, जो कामधेनु है, जो मनोकामना पूर्ण करने वाली है। बताया था गैया मैया की पूछ में कौन विराजते हैं? हनुमान जी महाराज। कई बार मैया कहती है कि बुरी नजर लगे, कहीं झाड़ा दिलवाने ले जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गैया मैया की पूंछ से आप झाड़ा उतारिए, देखिए नजर उतरती है कि नहीं। गौ मैया की जो पीठ है ना, जो कुबड़ है, उसके ऊपर अगर आप हाथ फेरेंगे तो वहां कहते हैं कि सूर्य केतु नाड़ी का वास है। और वहां अगर हाथ फेरेंगे तो शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं सबसे मुक्ति मिल जाएगी। अरे भैया, जिसका दूध अमृत हो, जो गैया मैया धर्म की धुरी कहलाती हो, जिसके बिना धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती, जो जगत की जननी है, जो पृथ्वी का रूप है, जो सर्वदेवमयी है, जिसके बिना वेदों की पूजा अधूरी है, उस गैया मैया के लिए संकल्प लें कि आप गैया मैया की सेवा करेंगे और जो मैया हमारी गैया मैया काटी जाती है उनको कटने से बचाएंगे। और इतना ही नहीं, आज कहते हैं कि बोले गैया मैया कटती है, उसका कारण है कि कसाई लेके जाता है, उसको दोष लगना है। गलती बोले उसकी है जो जब तक दूध पीता है और गैया मैया को बेच देता है, पैसे आएंगे, दोष आपने लगना है। ये सोचो कि जब गैया मैया जाती है कसाई के साथ तो किसी भी गैया मैया को देख लेना, वो बार बार मुड़ मुड़ के आपकी तरफ देखेगी। और आप उस गैया मैया की तरफ एक बार भी शायद ना देखते हो। आप विचार करो कि आपके घर में किसी के शरीर में कोई रोग हो जाए, किसी को थोड़ा जल जाए, तो आप उसको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, उसको दिखाएंगे। लेकिन जिन गैया मैया के ऊपर पेट्रोल डाला जाता है, जिनको जलाया जाता है, वो गैया मैया किसके पास जाए? जब हम पहली बार गोकुल धाम में गए थे तो वहां जब गैया मैया को देखा था तो मानो रोम रोम कहता हो कि धिक्कार है हमारे ऊपर, जिस भारत देश में रहते हैं, जिस राष्ट्र की धरोहर है मैया, हम उसको नहीं बचा सकते हैं। यहां जितनी भी मैया कथा श्रवण कर रही हूं उसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप एक बार गोकुल धाम का विचरण करो, आप वहां जाओ, आप वहां देखो, गैया मैया के पास दो मिनट बैठ के देखना। अगर आपको उसके सारे दर्द का एहसास ना हो तो आप यहां व्यासपीठ पर आकर बोल सकते हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो महाराष्ट्र जैसे संत महापुरुष, मैं तो उन्हें संत ही कहूंगी, जो ऐसे महापुरुष इस धराधाम पे हैं, जो स्वयं गैया मैया के गोबर से निकले हुए अनाज को धो करके स्वयं उसको ग्रहण करते हैं, और एक रोज नहीं, दो रोज नहीं, डेढ़ दो साल से वो इसी चीज को कर रहे हैं। जिस इंसान ने गैया मैया को बचाने के लिए खुद के बच्चों तक को बेच दिया हो, क्या उससे बड़ा संत कोई हो सकता है? लेकिन हम यहां सुनेंगे और फिर से वही करेंगे कि गैया मैया को जब तक दूध देती है उसको रख लेते हैं, और फिर किसी कसाई को पकड़ा देंगे। कभी उस गैया मैया को बेचने से पहले उसके पास दो घड़ी बैठकर तो देखिए, उसके बच्चे से तो पूछ करके देखिए, क्या तेरी माँ को देना उचित है, कभी पूछकर तो देखिए उनसे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। जब कसाई को एक किसान ने गैया मैया को बेच दिया और जिस समय गैया मैया का जेबड़ा खोला तो गैया मैया सिर्फ उसको इतना पूछती है कि मेरी खता तो बता दे कि मैंने किया क्या है, मेरा कोई दोष तो होगा। लेकिन बोले क्या, कुछ बोलने लायक होगा तो बोलेगा, लेकिन मैया सिर्फ यही पूछती है कि इस कसाई को देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, और रो रो के मानो रुदन करती और कहना चाहती हूं, जब लेके चला कसाई, जब लेके जाता है ना तो बड़ी पीड़ा होती है। अगर यही चीज आपके जीवन में आपको देखने को मिले तो शायद आप सहन नहीं कर सकते, लेकिन वो गैया मैया ना तो किसी से कुछ कह सकती है, बस इतना कह रही है उसको कि जब लेके चला कसाई फिर यूं बोली गौ माई, मेरी खता समझ ना आई, बता दे खोल के। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि तूने आखिर मुझे बेचा क्यों, मैंने सारा जीवन तेरे परिवार को पाला, तेरे बच्चों को पीने के लिए दूध दिया, खाने के लिए माखन दिया, घर में लगाने के लिए गोबर दिया, तूने उस गोबर को भी उपले के रूप में बेचना शुरू किया, मैंने फिर भी तुझसे कुछ नहीं किया, तूने खाने में मुझे चारा कम दिया, मैंने फिर भी तुझसे कुछ नहीं किया, तूने मुझे कभी दलिया तक नहीं खिलाया, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं किया। लेकिन आज जब सारे अत्याचार सहन कर लिए परंतु ये सहन नहीं कर पाई तो आज मुझे मजबूरन पूछना पड़ा कि जब लेके चला कसाई फिर यूं बोली गौ माई, मेरी खता समझ ना आई, बता दे खोल के। मेरी खता समझ ना आई, बता दे खोल के। वो दिन याद है कि भूल गया एहसान तुम्हें, मैंने जिंदगी यही बिताई, मेरी आज समझ ना आई, यहाँ कीमत है दो पाई, बिकू वहां तोल के। ओ मेरी खता समझ ना आई, बता दे खोल के। जा रही है ना तो उस कसाई को कहती है कि तू दो क्षण रुक, मैं इसको अंतिम बार अपने गले लगाना चाहती हूँ। इस बेदर्दी को तो दया नहीं आई, लेकिन मैं फिर भी इसकी आभारी रहूंगी और इसको एक बार अंतिम बार गले लगाना चाहती हूँ। और कहती है एक मिनट रुक जा सौदागर, एक मिनट रुक इतना बड़ा कुनवा है, इसको पूछ तो लूं।
इस कुनवे को बतला के जिन्हें पाला आज कमा के, आखिर में गले लगा के चलूंगी बोल के।
ओ मेरी कथा समझना, आई बता दो खोल के।
जाते समय मैया उसको कह रही है, मैं तो जा रही हूँ लेकिन एक जिम्मेदारी तेरे कंधों पे सौंप के जा रही हूँ। कभी ऐसा ना हो, डर लगता है कि जब तक तेरा काम निकले तू उसको बड़ा करे और फिर मेरी तरह काटने के लिए भेज दे। लेकिन हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूँ,
मेरे बछड़े का, मेरे बछड़े का ध्यान राखियो,
मेरे बछड़े का ध्यान राखियो,
किस पे कुछ एहसान राखियो,
किस पे कुछ एहसान राखियो।
हो ये बालक है घनायाना, कदे इसको ना धमकाना, मुझे पड़े छोड़ के जाना काल जा छोल के।
हो मेरी कथा समझना, आई बता दे खोल के।
अंतिम लाइनों में माना कहना चाहती हूँ, अंतिम लाइनों में निवेदन करना चाहती हूँ, आज मैया हिड़की दे के रोती है।
हो नागर कहता हिड़की ले रहा,
नागर कहे
जब खींचने लगा कसाई, एकदम आंखें भर आई,
जब खींचने लगा कसाई एकदम आंखें भर आई,
फिर चुप चल दी गौ माई नीची झोल के।
ओ मेरी कथा समझना, आई बता दे खोल के।
जब लेके चला कसाई
लेके चला कसाई, फिर न्यू बोली गौ माई,
कथा समझना आई बता दे खोल के।
ओ मेरी कथा समझना, आई बता दे खोल के।
ओ
मेरी कथा समझना, आई बता दे खोल के।
ओ
मेरी कथा समझना, आई
बता
बिहारी लाल की
जय।
आइए तो ये भाव रखते हुए, गैया मैया के चरणों में समर्पित इस भाव को रखते हुए आइए अब बढ़ेंगे, जिस आज क्योंकि पंचम दिवस है और गिरिराज महाराज जी की कथा आती है, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि नाना प्रकार की लीलाएं भगवान ने ब्रिजधाम के अंदर की है। गैया मैया को चराते थे तो भगवान का नाम गोपाल पड़ा है, यानी गोपालक जो होता है, गैया का पालन करने वाला होता है, वही गोपाल होता है। इसके आगे कथा आती है कि यमुना जी में कालिया नाग था, भगवान जाते हैं, खेल खेलते हैं गेंद और बैट का, तो भगवान की बोल चली जाती है जमुना जी में और भगवान स्वयं जमुना जी में जाते हैं और कालिया नाग के साथ भगवान का विशाल युद्ध हुआ है और कालिया नाग को कहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इसको छोड़ करके भगवान ने कृपा की है। तो कालिया नाग जमुना जी को छोड़ करके क्षीर सागर के लिए चला जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
जय।
आगे एक छोटी सी कथा और आती है कि भगवान ने गोपियों के चीर चुराए हैं, भगवान के चीर हरण किए हैं, तो इससे भी लीला श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराई है। बोले इसका कारण ये नहीं था कि भगवान गोपियों के चीर चुराते थे या उन्हें इस तरह का कार्य करने में आनंद आता था। भगवान चीर चुराते जब भी जमुना जी में मैया स्नान करती तो मानो भगवान शिक्षा देना चाहते हो कि जमुना जी हो या कहीं भी हो निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल जल के देवता हैं, उनके द्वारा श्रापित होते हैं, इसलिए जीव को कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी बताते बोले राजन देखो कृष्ण है ईश्वर और गोपी है जीव और वस्त्र है अविद्या, तो मानो कृष्ण रूपी ईश्वर ने इस जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी इन वस्त्रों में ज्ञान भर के दे दिया और गोपियों ने उस समय संकल्प किया कि आज के बाद हम कभी निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, बोले राजन आगे कथा आती है कि सभी इंद्र देवता की पूजा करते थे, तो भगवान ने कहा बोले इंद्र देवता की नहीं, आप गिरिराज जी का पूजन कीजिए। गाय भाव के साथ गिरिराज जी को मनाए कि छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गिरिराज जी तक आवाज जानी चाहिए, ठीक है, बोले गिरिराज जी महाराज की
जय।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बलिवाल कृष्ण भगवान की
जय।
किशोरी कामधेनु मैया की
जय।
और गाइए भाव के साथ, तालियों के साथ तालियों बजाते हुए। महाराज
छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज।
ओ गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज,
गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन
के साथ गाइए छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गिरिराज जी का भोग नहीं लगाया, फिर गिरिराज जी आ रहे हैं आपके पास और भाव के साथ गाइएगा
मानसी गंगा को स्नान,
मानसी गंगा को स्नान।
क्योंकि गिरिराज जी के लिए स्नान के लिए जल चाहिए था तो मन से गंगा का अर्पण किया, नाम पड़ गया मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा की
जय।
मानसी गंगा को
मानसी गंगा को स्नान,
धरू फिर चकलेश्वर को ध्यान,
धरू फिर चकलेश्वर को ध्यान।
दान घाटी पे दही को दान,
दान
घाटी पे दही को दान,
घाटी पे दही को दान।
और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई है? हाँ जी लगाई है, बहुत बढ़िया। तो सोचो कि तन से यहाँ है और मन से गिरिराज जी, तो परिक्रमा करके जाना।
करो परिक्रमा की तैयारी है,
जय हो।
करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज
जटा तेरी तीन लोग से न्यारी है, गोवर्धन महाराज
जय हो। हमारी कन्याओं की आवाज आ रही है, तो आप भी गाओ और ये मीठा मीठा बजाएंगे, इसीलिए भाव के साथ गाना है क्या।
छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज।
अभी पिछले वाले भक्त कंजूसी कर रहे हैं, गिरिराज जी का आशीर्वाद नहीं चाहिए, सभी नहीं चाहिए, तो भाव के साथ गाना है।
छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज।
छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज।
इंद्र को मन मर्दन तीनों,
इंद्र को मन मर्दन तीनों।
दुवत ब्रज को बचाए लीनों,
दुवत ब्रज को बचाए लीनों।
प्रकट भय खुद दर्शन दीनो,
प्रकट भय खुद दर्शन दीनो,
प्रकट भय खुद दर्शन दीनो,
प्रकट भय खुद दर्शन दीनो।
किसी नटराज की महिमा न्यारी है, गोवर्धन महाराज।
छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज।
संत जन पड़े रहे चहुओ,
संत जन पड़े रहे चहुओ।
निरख कर ध्यान धरे प्रभु को,
निरख कर ध्यान धरे प्रभु को।
शिखर के ऊपर नाचत मोर,
के ऊपर नाचत मोर।
शिखर के ऊपर नाचत मोर,
शिखर के ऊपर नाचत मोर।
करे
रहे ब्रज जन की रखवारी है,
कर रहे
ब्रज जन की रखवारी है। गोवर्धन महाराज
तेरी तीन लोग से न्यारी है, गोवर्धन महाराज,
ओ गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज,
गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज,
ओ गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज,
ओ गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज,
चंडाली
रहो
से
से न्यारी है गोवर्धन महाराज,
तेरी तीन लोक सो न्यारी है गोवर्धन महाराज,
जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज,
जटा तेरी तीन लोक सो न्यारी है गोवर्धन महाराज,
जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है
गोवर्धन महाराज।
आज की कथा को यही विश्राम देते हैं।